ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजे दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर भक्तवृन्द हरे राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दान जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन
यशोदा
नंदन ब्रज जन रंजन
यशोदा
नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्री रूपाज की
जय।
निताय गौर
प्रमाण हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भगवतीरुत्तम श्लोके
भक्तिर्भवतीर्नैष्ठकी
भक्तिर्भवतीर्नैष्ठकी।
श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय पांच श्लोक क्रमांक एक। अथ पंचमो अध्याय।
अथ पंचमो अध्याय।
श्री नारद उवाच।
श्री नारद उवाच।
पौरोहित्याय भगवान्
पौरोहित्याय भगवान्
वृत काव्य किला सुरे
वृत काव्य किला सुरे
षण्डामर्कसुतो तस्य
षण्डामर्कसुतो तस्य
दैत्यराज गृहन्तिके
दैत्यराज गृहन्तिके
तौ राज्ञा प्रापितं बालम्
राज्ञा प्रापितं बालम्
प्रह्लादं नय कोविदं
प्रह्लादं नय कोविदं
पाठयामास तु पाठ्या
पाठयामास तु पाठ्या
नन्याश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम्
यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम्
शुश्रुवेणूपपाठ च
शुश्रुवेणूपपाठ च
न साधु मनसा मेने
साधु मनसा मेने
स्वपराशद्ग्रहाश्रयम्
स्वपराशद्ग्रहाश्रयम्
एकदा सुरराट्पुत्र
एकदा सुरराट्पुत्र
अङ्क आरोप्य पाण्डव
अङ्क आरोप्य पाण्डव
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स
मन्यते साधु यद्भवान्
मन्यते साधु यद्भवान्
श्री प्रह्लाद उवाच
श्री प्रह्लाद उवाच
तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
वनं गतो हरिमाश्रयेत
तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
साधु मन्ये असुरवर्य देहिना
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहा
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम्
वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
निन्दन्तं पुलकोत्कलेन विकस अन्निपप्रसुञ्च प्रो गायन्तं दुतमाशु निर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वेतलं नृत्यन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्र वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब बफल पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने यस्या कदापि चलखेलनोथ धन्यातिरन्यपवने न कृतार्थमानि योगी मधुर्गमगति मधुसूदनोऽपि
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां रामलीला मैदान में 5 दिन से लगातार भगवान श्री राम और कृष्ण के भक्त की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यह स्थान ही भगवान की याद कराने वाला है, रामलीला मैदान। आइए आज का प्रवचन हम भगवान श्री राम जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज से 11.5 लाख पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अवतार लिए थे। अवतार लेकर किस प्रकार से मर्यादा धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने इस जगत को उपदेश दिया। उसी काल में अपने पिता के वचन को रखने के लिए और अपनी मां के आदेश से भगवान श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वन में गए। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र वन में जाते हैं उपदेश देने के लिए कि यदि पिता की इच्छा को पूर्ण करना हो, पिता के धर्म का पालन करना हो, तो पुत्र को 14 साल के लिए वन में भी जाना पड़े तो चले जाना चाहिए। वे गए। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र वनवास की पहली रात तमसा नदी के तट पर बिताए। तत्पश्चात वहां से आगे चले श्रृंगवेरपुर में पहुंचे और श्रृंगवेरपुर के बाद गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे। और इस वनवास के काल में भरद्वाज ऋषि के आश्रम से भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में आए हैं, 1 रात तक वहां पर रुके। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल और जगत जननी माता सीता तीनों वाल्मीकि की झोंपड़ी को छोड़कर जा रहे थे। उसी समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि को प्रणाम करके कहते हैं कि हे वाल्मीकि जी, हम लोग 14 साल के लिए वनवास में निकले हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे कोई ऐसे स्थान का निर्देश कीजिए जहां पर मैं, मेरी पत्नी सीता और मेरा भाई लखन रह सके। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, परंतु वे भक्त के मुख से बुलाना चाहते हैं। भगवान का प्रश्न है कि ऐसी जगह का निर्देश करो जहां पर मैं रह सकूं। जब भगवान ने वाल्मीकि को यह पूछा, तब वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु क्या आप नहीं जानते हो आपको कहां रहना चाहिए? सबसे पहले तो आप यह बताओ कि आप कहां नहीं रहते हो। प्रभु आप तो इस संसार में सब जगह पर रहते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सभी जगह पर समान व्यापक हैं, परंतु फिर भी प्रभु आपने मुझे पूछा है, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप यही पूछना चाहते हो कि आपको कहां रहना चाहिए, तो प्रभु सुनिए, मैं जहां पर बोलता हूं वहीं पर आप रहिए। तो सबसे पहले वाल्मीकि भगवान श्री रामचंद्र को उत्तर देते हैं, आपको कहां रहना चाहिए। हमारे मन में भी कभी प्रश्न होता है कि भगवान कहां रहते होंगे, भगवान हमारे घर पर आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे या नहीं आएंगे। वाल्मीकि उत्तर देते हैं, भगवान कहां रहते हैं। उत्तर देते हुए कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुनहि सुभग अति नाना। कहते हैं जो लोग अपने कान के माध्यम से नित्य निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं, राम और कृष्ण की भागवत की कथा सुनते हैं, उनके हृदय में निश्चित आप रहो। भगवान को रहने का स्थान बता रहे हैं, भगवान कहां रहते हैं। जो लोग 24 घंटे भगवान की कथा सुनते रहते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और इतना ही नहीं, 24 घंटा कथा सुनने के बाद भी वे तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान रहते हैं। अब हमारी हालत तो कैसी है, 1 प्रवचन सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है जीवन भर का सुन लिया। कभी कभी कुछ लोगों को बुलाया जाता है, आइए भागवत सप्ताह है, आप आइए, तो कहते हैं हमने बहुत सुन लिया है। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान नहीं रहते हैं। वाल्मीकि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जैसे समुद्र में अगाह मात्रा में जल होता है, वैसे जिसकी कान के माध्यम से अगाह मात्रा में भगवान की कथा सुनते रहते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, आपका पता बताइए, क्या आप वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब नारद जी ने कहा, तो फिर योगियों के हृदय में रहते होंगे, जो लोग अष्टांग योग करते हैं, अनुलोम विलोम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि प्राणायाम, जरूर आप उनके हृदय में रहते होंगे, क्योंकि बेचारे रोज सुबह उठकर बहुत मेहनत करते हैं। तब भगवान कहते हैं, नहीं नारद, योगी नाम रिद्धि येशुवा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं न तो योगियों के हृदय में रहता हूं। तब नारद पूछते हैं, तब आप कहां रहते हैं। तो भगवान अंत में कहते हैं, नारद यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां पर मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं वहां पर नित्य निरंतर उपस्थित रहता हूं। ये सत्य है, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान उपस्थित होते हैं। तो परम सौभाग्य है भगवान को प्रकट करने वाला, भगवान को हृदय में स्थान देने वाली भगवान की कथा हम लगातार 5 से श्रवण कर रहे हैं। और इस अवसर के पीछे एकमात्र ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। उनकी विशेष अनुकंपा के कारण आज ऐसे घोर कलयुग में भी हम एक साथ बैठकर श्रीमद् भागवत की शुद्ध कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह कथा वैसे तो बहुत पुरानी है, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण नहीं, पुराण में भी महापुराण। पुराण का एक अर्थ होता है पुराना, और भागवत को महापुराण कहा गया है, परंतु बुद्धि से विचार किया जाए तो यह नित्य नवीन पुराण है, क्योंकि रोज प्रतिदिन नित्य निरंतर स्वादु स्वादु पदे पदे प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद में प्रत्येक शब्द में नया विचित्र आनंद प्राप्त होता है। एक कथा यदि 10 बार भी सुनो, 100 बार नया नया आनंद मिलते रहता है, इसलिए यह पुराना नहीं, यह नित्य नवीन ग्रंथ है। तो आइए, हमारा जीवन वैसे तो भगवत विमुख रसों से बीत रहा है, कुछ क्षण भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए लगाए। यहां पर श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, और कल की कथा के अंत में राजसूय सभा में स्थित युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न पूछे हैं कि हे नारद जी, प्रहलाद महाराज में इतने सारे गुण थे, गुणे अमलम असंख्य, प्रहलाद महाराज में असंख्य गुण थे, परंतु इतने गुण होने के बाद भी उनके पिता ने हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास क्यों किया? पिता जो होते हैं कभी कभी अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, परंतु जान से मारने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास क्यों किया? एतद् संशयम्, ये मेरे मन में बहुत बड़ा संशय हो रहा है, कृपया करके मेरा संशय दूर करें। तो युधिष्ठिर महाराज का संशय दूर करने के लिए नारद मुनि प्रहलाद महाराज की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय से हम भी नारद मुनि की भाषा में यह कथा प्रारंभ करें। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि राजसूय सभा में उवाच का अर्थ होता है बोले। क्या बोले? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं,
पौरोहित्याय भगवान वृत काव्य किला सुरे शंडामर कुसुतो तस्य देत्यराज गृहांतिके।
नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि किल असुरे भगवान काव्य पौरोहित्याय वृत। किल का अर्थ होता है बहुत बहुत समय पहले। बहुत पहले की यह बात है, असुरे भगवान पौरोहित्याय काव्य वृत। असुरों ने काव्य को अर्थात शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस सृष्टि के प्रारंभ से दो प्रकार के जीव रहते आए हैं, एक को देवता कहते हैं और दूसरे को असुर कहते हैं। पुराणों में प्रश्न उठाया गया कि देवता किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं। कहते हैं द्वै भूतो लोकेस्मिन् देव आसुर एवच विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता आसुरत एतत् विपर्यय। जो विष्णु के भक्त होते हैं, जो भगवान विष्णु और कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसे सुरा कहते हैं, उसे देवता कहते हैं, और उससे बिल्कुल विपरीत विरुद्ध में जो विष्णु और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, आसुरत एतत् विपर्यय, उसे असुर कहा जाता है। तो ऐसे ही असुरों ने, सभी असुरों ने मिलकर काव्य का अर्थ होता है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। यहां पर प्रश्न होता है शुक्राचार्य को काव्य क्यों कहा गया? शुक्राचार्य का एक नाम काव्य है, क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य के पिताजी का नाम कवि है। जैसे व्यास देव के पुत्र होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को वैयासकी कहा जाता है, वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, वैसे ही कवि के पुत्र होने के कारण शुक्राचार्य को काव्य कहा जाता है। तो बहुत पूर्व काल पहले असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। पुरोहित का अर्थ होता है पूरम हित करोति इति पुरोहित, जो राजा का हित करे, जो अपने यजमान का भला सोचे, अपने यजमान और राजा के आगे आगे चलकर उसे दीर्घ दृष्टि प्रदान करे, उसे पुरोहित कहा जाता है। और दूसरा अर्थ यह भी होता है जो पुर की रक्षा करे, पुर की रक्षा करने में राजा को बुद्धि से सहाय करे, उसे पुरोहित कहते हैं। तो असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। तो प्रश्न होता है असुर ने शुक्राचार्य को क्यों अपना पुरोहित बनाया, और किसी को नहीं बना सकते थे? तो इतिहास में कथा आती है कि शुक्राचार्य और बृहस्पति के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा था। बृहस्पति जो है वे देवताओं के गुरु हैं, और यहां पर असुर देवताओं के शत्रु हैं। तो एक नीति है, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। तो बृहस्पति के शत्रु थे शुक्राचार्य, देवताओं के शत्रु थे, और असुर भी देवताओं के शत्रु हैं, इसलिए असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया, अपना गुरु बनाया। और शुक्राचार्य को गुरु बनाने का तात्पर्य यह था कि शुक्राचार्य बहुत महान व्यक्ति थे। कहते हैं कि शुक्राचार्य ऐसी विद्या जानते थे जो इस संसार में, इस त्रिभुवन में कोई नहीं जानता था। कहते हैं मृत संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या शुक्राचार्य जानते थे। इसलिए भागवत के अष्टम स्कंद में जब असुरों के सम्राट बलि महाराज की मृत्यु हो गई, तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसे जीवित किया। और भगवान भी भगवत गीता में बार बार शुक्राचार्य का नाम लेते हुए कहते हैं कविनाम उष्णाम कवि, बहुत महान है। तो ऐसे शुक्राचार्य को असुरों ने बहुत समय पहले अपना गुरु पुरोहित बनाया। और शंडा मरको सुतो तस्य तस्य, उस शुक्राचार्य के दो पुत्र थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, उनका नाम क्या था? नारद मुनि कहते हैं शंड अमरक इति प्रोक्त, उनका नाम शंड और अमरक था। एक का नाम शंड था और एक का नाम अमरक था। और वे कहां रहते थे? कहते हैं दैत्यराज गृहांतिके, दैत्यराज दैत्यों के सम्राट हिरण्याकश्यपु के गृह के अंति, अर्थात हिरण्याकश्यपु के गृह के घर के बिल्कुल बाजू में रहते थे। बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों का सिद्धांत है, कभी भी गुरु से इतना नजदीक भी नहीं रहना चाहिए कि हम उसे पहचान न सके, हम उसे अपराध कर दे, और गुरु से इतना भी दूर नहीं रहना चाहिए कि हमारी उसे पहचान न हो। हिरण्याकश्यपु ने शंड और अमर को अपने घर पर नहीं रखा और अपने घर से बहुत दूर भी नहीं रखा। कहते हैं दैत्यराज गृह अंति के, दैत्यराज हिरण्याकश्यपु ने अपने गृह के बाजू में शुक्राचार्य शंड और अमर के लिए एक महल बनाया था, और वहां पर शंड और अमर रहते थे। नारद मुनि कथा आगे बढ़ाते हैं।
तौराज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्या अन्याशासुरबालका
तौराज्ञा प्रापितं बालम। वे दोनों षंड और अमरक जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वे दोनों राजा हिरण्याकश्यपु के आदेश से हिरण्याकश्यपु के पुत्र को गुरुकुल में पढ़ाते थे। प्रह्लादम नयकोविदम, हिरण्याकश्यपु ने प्रह्लाद महाराज को गुरुकुल में भेजा था और गुरुकुल को चलाने वाले शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक थे। और केवल प्रह्लाद ही नहीं, प्रह्लाद के साथ अन्यांश्चा सुर बालकान, अन्य और भी असुरों के बालक प्रह्लाद के साथ उस गुरुकुल में पढ़ते थे। आज से कई वर्ष पहले की यह बात है और असुर हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में भेज रहे हैं। देखिए, पहले के जमाने में असुरों को भी यह बुद्धि थी कि पुत्रों को यदि पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना है तो उसे गुरुकुल में भेजना चाहिए। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, हिरण्याकश्यपु के पास धन की क्या कमी थी, फिर भी अपने बालक को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज रहे हैं। परंतु आज तो बिल्कुल विपरीत है, आज विद्यालय में ज्ञान बिल्कुल विपरीत हो चुका है। पहले के जमाने में पढ़ने के लिए विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास जाता था, परंतु आज ट्यूशन टीचर पढ़ाने के लिए उस शिष्य के घर पर आती है। देखिए, पहले के जमाने में विद्यार्थी शिष्य गुरु से पूर्ण शिक्षा लेने के बाद अंत में कहते थे कि गुरुजी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। परंतु आज कलयुग में शिक्षा लेने से पहले ही टीचर कह देते हैं कि हमारी इतनी फीस है, 5,000 रुपया दे सकते हो, फिर ही पढ़ाई कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। गुरु का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया है। इसलिए आज न तो कोई शिष्य ठीक से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के गुरु धनी लोगों के हाथ से बिक चुके हैं। पहले के गुरु में तेज होता था, पावर होता था, परंतु आज किसी में पावर नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान बिक चुका है। परंतु हिरण्याकश्यपु जैसा असुर भी इस बात को जानता था कि पुत्र को यदि पढ़ाना है तो गुरुकुल में भेजना चाहिए, क्योंकि घर में ममता होती है, माया होती है, इसलिए बालक ठीक से पढ़ नहीं सकता है। तो गुरुकुल में प्रह्लाद महाराज को भेजे, कौन सी शिक्षा पढ़ाने के लिए भेजे? कहते हैं नयकोविदम, न्याय शिक्षा पढ़ाने के लिए भेजे। किस प्रकार से एक राजा को कर वसूल करना चाहिए, कैसे अपराधी को दंड देना चाहिए, कितना कोष संग्रह करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, शत्रु की सेना पर कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, यह सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को षंड और अमर की गुरुकुल में भेजा। और वहां गुरुकुल में षंड और अमर क्या कराते थे? कहते हैं पाठ्या मास्तु पाठ्यान, अपनी किताब में जितने भी पाठ थे, जितने भी श्लोक थे, वह सभी श्लोकों का पाठ कराते थे। पाठ का अर्थ है एक ही वस्तु को बारंबार रटना। एक ही वस्तु को बारंबार रटने से, उसका बारंबार अभ्यास करने से वह वस्तु हृदयंगम हो जाती है, हमारे हृदय मन और बुद्धि में फिट हो जाती है, सब याद रह जाता है। पहले के जमाने के ऋषि मुनि गुरु अपने शिष्य को पाठ कराते थे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गीता, भागवत और भी अन्य अन्य शास्त्रों के श्लोकों को रटवाते थे, प्रतिदिन बारंबार एक ही चीज को, और उसी कारण वह सारे श्लोक इत्यादि सब कुछ याद रह जाता था। परंतु आज किसको कुछ भी याद नहीं रहता है। हमें अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आप 2-2.5 घंटा प्रवचन करते हैं, हम सुनते हैं, परंतु याद कुछ नहीं रहता है। तब हमारा उत्तर यही होता है कि आप अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब कुछ याद रहता है, परंतु हम अभ्यास करना नहीं चाहते। ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि अभ्यास हो तो व्यक्ति सब कुछ याद कर सकता है। महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना आप सब लोग जानते होंगे। कौरव और पांडव जब छोटे छोटे बालक थे, तब द्रोणाचार्य के वहां शिक्षा प्राप्त करने गए थे, और द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य ने पहले ही दिन एक लक्ष्य बनाया और सभी अपने शिष्यों को कहा कि कल सुबह से आप सबको प्रैक्टिस अभ्यास करना है उस लक्ष्य को भेदने के लिए। तो आप सबको जो जो शस्त्र अस्त्र अच्छा लगे सब ले लीजिए। भीम को गदा अच्छी लगी, उन्होंने गदा ली। युधिष्ठिर महाराज ने भाला लिया, अर्जुन ने धनुष ग्रहण किया। सबने अपनी अपनी रुचि के अनुसार शस्त्र प्राप्त कर लिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब कल सुबह से हम लोग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। कौरव और पांडव सभी बालक अपनी अपनी कुटिया में जाकर सो गए। परंतु रात को 11-12 बजे अर्जुन को कुछ आवाज आई और वे जग गए, क्योंकि अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है अपनी नींद को वश में करने वाला। थोड़ा ही आवाज आया तो रात को 1:30 बजे अर्जुन जग गया और देखने लगा कि इतनी रात को आवाज कहां से आ रही है। तो जहां से आवाज आ रही थी, आवाज को सुनते सुनते अर्जुन वहां पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर देखा तो वह द्रोणाचार्य का किचन था, रसोई घर था। अर्जुन ने कहा कौन है? भीम ने कहा मैं हूं। अर्जुन ने कहा मंझले भैया आप यहां क्या कर रहे हो? भीम ने कहा क्या करूं भैया, भूख लगी है। रात को 1:30 बजे भीम को भूख लगी थी और रसोई घर में जाकर लड्डू खा रहे थे। परंतु अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि वहां पर थोड़ा भी प्रकाश नहीं था। हमारे मुंबई शहर में लाइट जाती है तो भी फिर भी थोड़ा प्रकाश होता है, हम अपने आप को देख सकते हैं। परंतु जंगल में जब लाइट नहीं होती है तो हम हमारे हाथ को भी नहीं देख सकते। इतना अंधकार था। अर्जुन को मन में प्रश्न हुआ कि मंझले भैया, भीम भैया, इतनी रात को 1:30 बजे मुझे अपना हाथ में भी नहीं दिख रहा है, आपको रसोई घर कैसे मिल गया? रसोई घर मिल गया तो इस रसोई घर से लड्डू का डिब्बा कैसे पकड़ लिया आपने, और लड्डू का डिब्बा खोलकर लड्डू अपने मुख में ही कैसे डाल रहे हो? भीम ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास है, इतने साल की प्रैक्टिस है, अभ्यास है, और अभ्यास के कारण सब कुछ मैं कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लेता हूं। बस अर्जुन के मन में क्लिक हुआ कि अभ्यास करने से रात को 1:30 बजे यह भीम बिल्कुल अंधेरे में रसोई घर में आ सकता है, तो मैं क्यों धनुषधारी नहीं बन सकता हूं। रात को 1:30 बजे अर्जुन ने अपना बाण और धनुष धारण किया और द्रोणाचार्य ने जिस लक्ष्य का निर्माण किया था, अर्जुन उस लक्ष्य को भेदने लगे। रात को 1:30 बजे जब बाण चलाने की आवाज आई तो द्रोणाचार्य जग गए, जगकर देखने लगे कि रात को 1:30 बजे कौन बाण चला रहा है। बाहर आकर देखे तो अर्जुन बाण चला रहे थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा ये हमें कल सुबह उठकर करना है, रात को क्यों शुरू हो गए? तब अर्जुन ने इतना ही कहा कि गुरुजी अभ्यास करने से सब कुछ संभव है, इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। तब महाभारत में वर्णन है, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन वास्तव में धन्य है तुम्हारी जिज्ञासा को, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरे आशीर्वाद से तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा गांडीवधारी धनुषधारी हो। और यही हुआ आगे चलकर द्रोणाचार्य की कृपा से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी बने। अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करने से सब कुछ याद रहता है, ऐसा कोई असंभव वस्तु नहीं है। एक बार ऐसा ही एक बालक था, बेचारा बहुत पढ़ने में एक एक स्टैंडर्ड में दो दो तीन तीन साल पढ़ता था, फिर भी वह पास नहीं होता था। स्कूल में पढ़ता था, एक एक कक्षा में दो दो तीन तीन पांच पांच साल हो गया, लगभग अपने पूरे गांव के साथ वह पढ़ चुका था, क्योंकि गांव के लोग तो कक्षा बदलते रहते थे, ये एक ही कक्षा में बेचारा। और जिस क्लास में बैठता था वहां इतना हट्टा कट्टा मोटा हो गया, उम्र भी बढ़ गई और बाकी सब छोटे छोटे। अंत में सभी टीचरों ने और प्रिंसिपल ने मिलकर मीटिंग की कि ये बालक एक एक कक्षा में तीन तीन पांच पांच साल फेल होता आ रहा है, यदि इस बालक को हमारी स्कूल में रखेंगे तो हमारी स्कूल का नाम बिगड़ जाएगा, कैसे भी करके इसको बाहर निकालो, नहीं तो हमारी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेगा। सभी लोग ने मिलकर मीटिंग की और उस बालक को स्कूल से निकाल दिया। इतिहास में उसका नाम वोबजी नाम के इस बालक की कथा है। बालक को लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया और कह दिया कि कल से स्कूल में मत आना। सर्टिफिकेट लेकर बालक घर पर नहीं गया, बहुत दुखी था कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों कुछ याद नहीं रहता है। घर पे नहीं गया, घूमते घूमते सबको पता है कि हम किसी गांव में एक कुआं तो होता ही है, अपने गांव के कुएं के बाजू में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बेचारा अफसोस करने लगा कि मैं क्यों पढ़ाई में इतना कमजोर हूं। यह सोचते सोचते उस वोपदेव जी की नजर उस कुएं के ऊपर गई, और पहले के जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी के साथ रस्सी तो बांधते थे, परंतु वो जो चक्कर आता था वह चक्कर नहीं होता था, इसलिए कुएं की जो दीवार होती थी, दीवार के ऊपर जो पत्थर होते थे, उस पत्थर से रस्सी घिसकर नीचे जाती थी और रस्सी उस पत्थर से घिसते हुए ऊपर आती थी। तो ये वोपदेव बालक ने देखा कि यहां पर लोग रस्सी से पानी खींचते हैं डालते हैं, और रस्सी के द्वारा वहां उस पत्थर इतना घिस गया कि उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए। उसके मन में यही प्रश्न उठा कि एक रस्सी से यदि पत्थर तोड़ा जा सकता है, बारंबार अभ्यास करने से बारंबार घिसने से रस्सी से यदि पत्थर टूट सकता है तो मेरा दिमाग पत्थर से तो कठोर नहीं है। मन में यह विचार उठा कि यदि अभ्यास किया जाए तो निश्चित सब कुछ याद रह सकता है, और उस दिन से उस वोपदेव नाम के बालक ने अभ्यास शुरू किया। कहते हैं सबसे पहले भगवत गीता का अभ्यास, भगवत गीता के एक एक श्लोक को बारंबार रटता था, और बारंबार रटते रटते पूरी भगवत गीता को याद कर लिया, बिना देखे एक ही सांस से भगवत गीता के सभी श्लोक का उच्चारण कर देता। तत्पश्चात उन्होंने भागवतम हाथ में लिया और भागवतम के प्रति श्लोक का अभ्यास करने लगा। कहते हैं भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, वह वोपदेव ने 18,000 श्लोक को मुंह जुबानी याद कर लिया बिना देखे। कथा आती है कि जब आज से कई वर्ष पूर्व मुसलमान लोग भारतवर्ष में आए, तो वे लोग यहां पर कई महीनों तक रुके थे। जितने महीनों तक रुके उतने महीनों तक उन्होंने जो अपना खाना पकाया, वे सब खाना हमारे भारतवर्ष में जितने वेद थे, वेद शास्त्रों को जला जला कर अपना खाना पकाया था, और लगभग 96% वेद को मुसलमान लोगों ने जला दिया। और आचार्यों का कहना है कि उस समय भागवत को भी मुसलमानों ने जला दिया। संसार में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अब जीवों का कल्याण करने के लिए वेदव्यास जी ने जो भागवत लिखा था उसका क्या होगा, मुसलमान लोगों ने जला दिया। भारत में बहुत बड़ा प्रश्न उठा, बड़े बड़े लोग इस प्रश्न को सुलझाने के लिए मेहनत कर रहे थे परंतु फिर भी वह नहीं सुलझा। अंत में घूमते घूमते यह सभी प्रसिद्ध नेताओं को प्राइम मिनिस्टरों को पता चला कि वोपदेव नाम का एक बालक है जिनको भागवत के सभी श्लोक याद हैं। उस बड़े बड़े विद्वानों की सभा में इस वोपदेव बालक को बुलाया गया और कहा कि आपको भागवत के सभी श्लोक याद हैं? कहे हाँ। तो वोपदेव लगातार झांझावा तूफान की तरह भागवत के सभी श्लोक को बोल दिए। सब लोगों ने ताली बजाई और अंत में पूछा कि आप कौन सी स्कूल में पढ़े हो? कौन सी स्कूल में पढ़े हो? स्कूल का नाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल टीचरों को बुलाया। टीचर और प्रिंसिपल ने कहा कि इसको तो हमने स्कूल से बाहर निकाल दिया था। कथा का यही तात्पर्य है, अभ्यास करने से सब कुछ याद रह सकता है। शंड और अमर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में पाठ कराते थे और जो भी पाठ कराते थे उसे सब कुछ याद रह जाता था। नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। यत्र त्र गुरुणा प्रोक्तम सुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्गहाश्रयम्। यत्र गुरुणा प्रोक्तम, नारद मुनि कहते हैं कि वहां पर गुरुओं के द्वारा जो भी सिखाया जाता था प्रहलाद महाराज उसे सब कुछ याद कर लेते थे। स्कूल में जो भी गुरुकुल में जो भी सिखाया जाता था प्रहलाद महाराज सब कुछ याद कर लेते थे, परंतु प्रहलाद महाराज को वह अच्छा नहीं लगता था। न साधु मनसा मैंने, प्रहलाद महाराज को इस जगत की भौतिक शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो आध्यात्मिक में रुचि लेता है फिर उसे इस भौतिक जगत की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। न साधु मनसा मैंने, परंतु फिर भी भौतिक जगत की शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वे सब कुछ याद कर लेते थे। ये भक्त का स्वभाव होता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो भक्ति शुरू करते ही उसे भौतिक कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। भौतिक कार्य करना भी उसे रुचिकर नहीं लगता है, परंतु फिर भी भक्त को भौतिक कार्य अच्छे नहीं भी लगे फिर भी वे ऑफिस जाता है, वे बिजनेस करता है, वे अपना सब कुछ काम करता है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन को उपदेश देते हुए कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, घूमते घूमते जब रामकेली नाम के गांव में पहुंचे, उस समय राजा हुसैन शाह के दो मंत्री थे, दब्बीर खास और साकर मल्लिक, और ये दोनों के हृदय में वैराग्य हुआ। यद्यपि जन्म से ब्राह्मण थे, मुसलमान के वहां नौकरी करते थे इसलिए उसे मुसलमान की पदवी दी गई थी। मंत्री के पोस्ट पर थे और ये दोनों मंत्री दब्बीर खास साकर मल्लिक चैतन्य महाप्रभु के पास आए जो साक्षात भगवान थे, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु अब हमें नौकरी नहीं करनी है, अब हमें धंधा बिजनेस नहीं करना है, हम आपके साथ वृंदावन चलेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु उसे उपदेश देते हुए कहते हैं, पर व्यसननी नारी व्यग्रा अपि गृह कर्मसु। कहते हैं कि यदि कोई पति की पत्नी हो और उस पत्नी का मन किसी पराये पुरुष के ऊपर आ जाता है तो वह पत्नी अपने घर का काम इतना अच्छी तरह से करती है कि घर वालों को और उसके पति को पता न चले कि उसका मन दूसरे किसी पुरुष पर आ गया है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर आ गया है, यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें संसार के कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि संसार के लोग को पता न चले कि ये भगवान के कितने महान भक्त हैं। हे दबीर का साकर मलिक, ये जो भी वैराग्य है, वैराग्य बाहर से मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य हृदय से होना चाहिए। संसार में देखा गया है कुछ लोग वैराग्यशाली बनते हैं, बाहर से वैरागी बाबा है परंतु हृदय से भोग की कामना कम नहीं हुई है। बाहर से ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, परंतु हृदय से वैराग्य कम नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं कि वैराग्य हृदय से होना चाहिए, बाहर से दिखावा नहीं होना चाहिए। एक बार एक गांव में ऐसे ही एक वैराग्यशाली बाबा आए। हृदय से कोई वैराग्य नहीं था, बाहर से वैराग्य का नाटक कर रहे थे। और हमारे गुजरात के गुजरात में किसी एक गांव में आए। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि आपको किसी को ठगना है तो आप गुजरात के किसी गांव में जाकर मौन होकर बैठ जाओ, वे आपको भगवान मानने लगेंगे। बेचारी जनता इतनी भोली है, अंधश्रद्धालु है। यदि कोई 3 दिन तक ऐसे मौन बैठ गया तो सब लोग भगवान कहकर पूजने लगेंगे, और वही 2-3 साल के बाद किसी लड़की को लेकर भाग जाएंगे। देखा गया है, कई दृष्टांत हैं ऐसे। ऐसे ही एक वैरागी बाबा आए थे किसी गुजरात के गांव में। गांव वाले में हल्ला मच गया कि हमारे गांव में महात्मा आए हैं, संत आए हैं। और गांव वाले कुछ कुछ अपनी भेंट ले लेकर साधु के पास गए और सब लोग अपनी यथाशक्ति के अनुसार दे रहे थे, परंतु ये दोनों कुछ स्वीकार नहीं कर रहे थे। उतने में गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिलेबी लेकर गया और कहा कि साधु महाराज, मैं आपके लिए जिलेबी लेकर आया हूं। साधु महाराज तो मौन बैठे थे, उन्होंने जिलेबी दिया तो साधु महाराज ने इतना जोर से उड़ा दिया, जिलेबी मिट्टी में जाकर गिर गई। तो उसने उसको लगा कि अरे बाप रे, बहुत बड़े वैरागी हैं, जिलेबी देते हैं तो वह भी फेंक देते हैं, क्या वैराग्य है इनका। तो वे थोड़ा आकड़ू था, वे उस किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसने देखा कि चलो आगे क्या होता है देखते हैं। दोपहर को बिल्कुल 2-2.5 बजा गर्मी की ऋतु थी, सब लोग अपने अपने घर पे जाके सो गए। साधु महाराज ने आजू बाजू में देखा, कोई नहीं है। खड़े हुए और जिस जिलेबी को मट्टी में फेंक दिया था उसे लेकर मट्टी साफ कर करके वे खा रहे थे। तब वो पेड़ के पीछे से निकला, साधु महाराज यदि खाना ही था तो मट्टी में क्यों फेंक दिया आपने, प्रेम से खा लिया होता। वैराग्य बाहर से दिखाते हैं, परंतु वैराग्य अंदर से हृदय से होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को यह भौतिक शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, वे जानते थे यह भौतिक शिक्षा कुछ काम में नहीं आने वाली। और तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, प्रहलाद महाराज को भौतिक शिक्षा क्यों अच्छी नहीं लगती थी? क्योंकि आज के संसार के लोग तो भौतिक शिक्षा डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, MBA, BBA, CA, एक से एक डिग्री प्राप्त करने के लिए बालक बेचारे बहुत रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज को ये अच्छा क्यों नहीं लगता था? तब नारद मुनि कहते हैं, स्व पर असद ग्रहाश्रयम, क्योंकि यह भौतिक शिक्षा मैं और मेरा इस आत्मा के आधार पर नहीं, शरीर के आधार पर थी। इस संसार में जितने भी स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा दी जाती है, यह सारी शिक्षा का आधार शरीर है। किस प्रकार इस शरीर का पालन पोषण करना चाहिए, किस प्रकार से इस शरीर को भोग अर्जित करना चाहिए, किस प्रकार से इस शरीर को सुखी रख सकते हैं, यही शिक्षा पढ़ाते हैं। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता है। परंतु भक्तों, जब तक आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं देगा तब तक जीव वास्तविक सुखी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मूलभूत स्वरूप, हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब तक हम हमारे बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज बड़े से बड़ी डिग्री प्राप्त करने वाले भी दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के लिए लेवल पर जी रहे हैं। और इस संसार में जितने भी भौतिक डिग्रियां मिलती हैं, उतना ही व्यक्ति अपने मूलभूत स्वरूप से दूर होता जा रहा है। वास्तव में जीव का स्वरूप है, जीव आत्मा है, भगवान का अंश है। परंतु एक तो पहले से ही इस आत्मा के ऊपर यह देह का बंधन आ चुका है, अपने स्वरूप को भूलकर यह भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और अपने आप को यह शरीर मानने लगता है, और उसमें भी उसे डिग्री मिलती है मैट्रिक पास, तो और एक बंधन और एक अज्ञान, उसमें और एक डिग्री मिलती है बीकॉम, और एक अज्ञान जुड़ा, उसमें और एक डिग्री लगती है एमकॉम, फिर और एक डिग्री लगती है सीए सीएस, एक से एक डिग्री जितनी मिलती जाती है उतना व्यक्ति अपने स्वरूप से दूर होता जा रहा है। इसलिए आप देखोगे जितने लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वे बहुत कम भक्ति में आते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वे भगवान की बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना अज्ञान नहीं है। तो प्रहलाद महाराज इस भौतिक शिक्षा को अच्छा नहीं मानते थे, परंतु फिर भी उसे ग्रहण करते थे। वे उनके हृदय में जितनी भी भक्ति जितना भी वैराग्य था वे बाहर से नहीं दिखाते थे, अंदर ही रखते थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने गुरु जी के वहां गुरुकुल में एक साल तक पढ़े, तब वे चार साल के हो चुके थे। और जब एक साल बीतता है तो आप सबको पता है कि दो महीने का वेकेशन होता है, छुट्टी होती है। तो एक साल समाप्त हुआ और छुट्टी के दिनों में शंड और अमर अपने गुरुकुल में जितने भी बालक थे ये सभी बालकों को लेकर सभी के घर पर भेज दिए, और प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप के घर पर छोड़ दिए। प्रहलाद महाराज छुट्टी के दिनों में अपने घर पर आए हैं, और अपने घर पर आए हैं तो माँ कयाधु और पिता हिरण्याकश्यप दोनों प्रसन्न हुए, क्योंकि बालक घर पर आया है। पिता कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, खल हो, परंतु अपने पुत्र से तो बहुत प्रेम करता है। सिंह या शेर भले कितना खूंखार जानवर है परंतु अपने पुत्र से तो बहुत प्रेम करता है, वैसे हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। और जब छुट्टियों के दिन में प्रहलाद महाराज घर पर आए तो एक दिन की बात नारद मुनि वर्णन करते हैं, एकदा असुर राट पुत्र अंक आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे पांडव, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात, हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। हिरण्याकश्यप राज सिंहासन पर बैठे थे और अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर उसका लालन कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, चुंबन करना, उनके सिर पर हाथ घुमाना, इस प्रकार से प्रेम कर रहे थे। यहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को संबोधन देते हैं, हे पांडव। यहां पर पांडव संबोधन देकर युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि आपके भी पिता थे पांडु महाराज, जैसे आपके पिता आपको प्रेम करते थे, आपको गोद में बिठाते थे, युधिष्ठिर उसी प्रकार हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया है, और अपने गोद में बिठाकर प्रपच्छ हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को पूछा कि बेटा वत्स तुम्हारा कल्याण हो, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये साल में तुमने जो सीखा उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। मन्यते साधु यद भवान, तुमने एक साल में जो शिक्षा ग्रहण की उस शिक्षा में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। आजकल के भी माता पिता अपने पुत्र से जानना चाहते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ाया, आज क्या पढ़कर आए। तो ऐसे हिरण्याकश्यप भी अपने पुत्र को पूछ रहा था कि पढ़ाई में सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरा पुत्र कहेगा कि किस प्रकार से कोष संग्रह करना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगा, शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए यह अच्छा लगा, या राजनीति किस प्रकार से करनी चाहिए यह अच्छा लगा। परंतु प्रहलाद महाराज ने तो बिल्कुल विपरीत जवाब दिया। हिरण्याकश्यप ने पूछा है कि सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, और यह उत्तर शास्त्र में अमर है। 5 साल का बालक है, ये सबको याद रहना चाहिए, 4 साल का बालक है, और किसका पुत्र है, हिरण्याकश्यप, जो तीनों ब्रह्मांड का स्वामी बनकर बैठा है, 33 करोड़ देवी देवता जिनके चरणों में झुके हुए हैं, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सभी जीवों को अपने वश में कर बैठा है। ऐसा हिरण्याकश्यप के पुत्र को पूछा गया कि सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं। श्री प्रहलाद उवाच,
तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहे मन्दकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
प्रहलाद महाराज अपने पिता को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे असुर सम्राट, प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को पिताजी नहीं कर रहे हैं, पापा या डैडी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नारद मुनि कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को असुर वर्य कहा। असुर वर्य का अर्थ होता है असुर सम्राट, और दूसरे शब्दों में अर्थ होता है असुरों के सरदार। प्रहलाद अपने पिता के गोद में बैठकर अपने पिता को कहते हैं कि हे असुरों के सरदार, आप यही जानना चाहते हो मुझे कौन सी बात अच्छी लगी, तो सुनिए। परंतु इस शब्द के ऊपर बहुत विचार किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में एक बार भी अपने पिता को पिता नहीं कहा है। जब भी अपने पिता को संबोधन करना होता, बुलाना होता, तो वे असुर वर्य या असुरों के सरदार कहके बुलाते। और यह सुनकर हिरण्याकश्यप दुखी भी नहीं होते थे। हिरण्याकश्यप को लगता था कि मेरा पुत्र मेरी महानता को जान रहा है, मैं कितना महान हूं, मैं सरदार हूं, यह जान रहा है। दोनों ओर से खुश थे। परंतु प्रहलाद महाराज अपने पिता को पिता इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि हिरण्याकश्यप पिता था ही नहीं। शास्त्र में कहा गया है भगवान ऋषभदेव जो भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार थे, और वे अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, इस संसार में वह माता माता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, और वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र और शिष्य को भक्त न बना सके। गुरु न सस्यात् स्वजनन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत समुपेत मृत्युम्। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि वह पिता और वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। वही पिता पिता कहलाने के योग्य है जो अपने पुत्र को भक्त बनाते हैं। और हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि यदि आपको अपने पुत्र को भक्त बनाने की शक्ति नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है, आप पुत्र पैदा करो। और यदि आप अपने पुत्र को भक्त बना सकते हो तो आप 100 पुत्र पैदा करो, भगवान आप पर कृपा बरसाएंगे। पिता उसे कहा जाता है जो पालन करे, और वास्तविक पालन वह है अपने पुत्र को भक्त बनाना। जो अपने पुत्र को भक्त बनाए वही पिता है। इसलिए पिता को पुत्र पैदा करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्या मैं मेरे पुत्र को भक्त बना पाऊंगा? यदि नहीं तो कभी पुत्र पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान की निगाह में हम गुनेगार बनेंगे। यदि भगवान की निगाह से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले पुत्र को भक्त बनाइए, और पुत्र को भक्त बनाने के लिए स्वयं भक्त बनिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लड़के अच्छे नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं, भक्ति नहीं करते हैं। अरे आप भक्ति करोगे तब पुत्र करेंगे। हमें कोई ठिकाना नहीं है, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, और चले हैं पुत्र को भक्त बनाना। पुत्र पिता के लक्षण को देखता है और पिता का लक्षण पुत्र में आता है। पिता ही यदि काम मोह और भोग में फंसा हुआ है, पुत्र कैसे साधु बन सकता है? तो वास्तव में वही माँ माँ है, वही पिता पिता है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए। इस घोर कलयुग में देखा गया है कि कुछ माँ और पिता अपने पुत्र को भक्त बनाने की तो बात दूर रही, अपने पुत्र को बिगाड़ रहे हैं, पुत्र को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इस संसार में कुछ ऐसे भी पुत्र हैं जो चाहते हैं कि हम मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन करें, परंतु माता पिता रोकते हैं, क्यों मंदिर में जाते हो? ये उम्र है मंदिर में जाने की? अभी तो आपकी उम्र खाने पीने की खेलने की है, बूढ़े हो जाओगे तब मंदिर में जाना। बेचारे पुत्र धर्म करना चाहते हैं परंतु माता पिता करने नहीं देते हैं। वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है। इसी बात को रामायण में भरत जी कहते हैं। जब कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए वन में भेज दिया, और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से जब घर पर आए, पता चला मेरी माँ कैकेयी ने ही राम को वन में भेजा है, तब भरत जी कैकेयी पर बहुत बिगड़े। यहां तक अपनी माँ को कह दिया कि आज के बाद मैं तेरा पुत्र नहीं और तू मेरी माँ नहीं। अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दिया, तू मेरी माँ नहीं है। कैकेयी ने कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि अपनी माँ को माँ नहीं कहने वाला नरक में जाता है। तब भरत आदर्श स्थापित करते हुए अपनी माँ को कहते हैं कि तेरी जैसी को माँ बनाने से अच्छा है मैं हजारों बार नरक में जाऊंगा, क्योंकि वह माँ माँ नहीं है जो भगवान राम से उनके भक्त को अलग करे, और तूने मेरे प्राण प्रिय भैया और भगवान श्री राम को मुझसे अलग कर दिया है, तू माँ नहीं है। और यदि मुझे 1000 बार नरक में जाना पड़े मैं नरक में जाऊंगा, परंतु तुझे कभी मां नहीं कहूंगा। सत्य है जो मां और पिता अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते हैं, पर मां बाप कहना ना कि योग्य नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज अपने जीवन में एक बार भी हिरण्याकश्यप को पिता नहीं कहे। मां और बाप को पुत्र को संस्कार देने चाहिए, भक्ति देनी चाहिए, तब जाकर पुत्र संस्कृतिक होंगे। आजकल के माँ और पिता क्या संस्कार देते हैं? मैं अक्सर मेरी कथा में एक सत्य घटना का निरूपण करता हूं। आज से 11 साल पहले मैं एक फिल्म देखने गया था बंबई चन्नी रोड सेंट्रल प्लाजा में। कुछ मूड ठीक नहीं था तो अकेला फिल्म देखने चला गया, तो फिल्म देख रहा था और मेरी आगे की ही सीट में एक ऐसी ही माता अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। और फिल्म देखते देखते उतने में फिल्म में एक बहुत अच्छा गीत आया, और उस फिल्म का हीरो सलमान खान था, और करीबन लगभग कम से कम 20 लड़कियों के साथ वह नाच रहा था। तो जैसे ही वह 20 लड़कियों के साथ नाचना शुरू किया, उसके आगे वाले उस माता की गोद में वो बच्चा सो रहा था। जैसे ही वह सलमान खान लड़कियों के साथ नाचने लगा तो वो अपने बच्चे को जगा रही है, देखो देखो नाच रहा है। बेचारा बालक सो रहा है, देख नहीं रहा है, परंतु उसे जगा रहा है, जगा रही है, देखो 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 कैसे नाच रहा है। आज माँ अपने पुत्र को ऐसा संस्कार दे रही है। अब बताइए, ये लड़के बड़े होकर किसी लड़की को लेकर भाग नहीं जाएंगे तो क्या साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे? ऐसे ही टीवी को वीडियो को खरीद में हम हमारे घर पर लाते हैं और नंगा नाच दिखाते हैं, फिर बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? शुद्ध संस्कार देने चाहिए। वास्तव में धन्य है हमारा इतिहास में ऐसी ऐसी माँ हो गई जो अपने पुत्र को शुद्ध संस्कार देती थी। हमारे इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े राजा हो गए छत्रपति शिवाजी, बहुत प्रतापी सुरवीर थे। कहा जाता है शिवाजी के पराक्रम को देखकर भवानी माँ प्रसन्न हो गई, और माँ भवानी ने प्रसन्न होकर एक दिव्य तलवार उन्होंने अर्पण की। कब? जब उनकी माँ जीजा माता ने उसे संस्कार दिया। और कैसे संस्कार दें? जब जीजा माता शिवाजी को बचपन में सुलाती थी तब राम और कृष्ण की गाथा सुनाती थी, बड़े बड़े योद्धा पराक्रम की गाथा सुनाती थी, तब जाकर शिवाजी इतने महान शूरवीर हुए। परंतु आज फिल्म के गाने के अलावा कुछ नहीं सुनाते हैं। रामायण में सुमित्रा को देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में जा रहे थे तब सीता मैया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, और उतने में लखनलाल आए, क्रोधित होकर आए कि मैं भी आपके साथ चलूंगा प्रभु। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि लखन, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, यहाँ पर कोई है नहीं, तुम यहाँ पर रहो और हमारे माँ और पिता की सेवा करना। लक्ष्मण नहीं माने, कहा भैया मैं आपके साथ ही चलूंगा। जब लक्ष्मण जी बहुत बहुत कहे तब भगवान श्री रामचंद्र ने लखन को कहा, एक काम करो, यदि आपको चलना ही है तो अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ, क्योंकि जब तक अपनी माँ की आज्ञा नहीं है तब तक मैं आपको नहीं लेकर जा सकता हूं। लक्ष्मण जी मन में बहुत संकोच अनुभव कर रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण को एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहा था कि माँ ने यदि ना कह दिया तो मेरे भैया राम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। लखनलाल सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुंचे हैं और अपनी माँ के पास पहुंचकर लखनलाल कहते हैं कि माँ, माँ भैया रामचंद्र 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं 14 साल के लिए उनकी सेवा करूं, तो हे माँ मैं आपसे अनुमति आज्ञा लेने आया हूं कि मैं मेरे भाई राम के साथ जाऊं। तब वह माँ सुमित्रा लखनलाल को कहती हैं कि लखन, ये कोई पूछने की आवश्यकता है? तेरा भाई राम जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ है, परम ईश्वर परमेश्वर है, उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है और तू मुझे पूछने आ गया? डांटते हुए कहा, मुझे पूछने की आवश्यकता है? अरे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य होते हैं, सुकृति होती है, तब जाकर राम जैसे कृष्ण जैसे भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। खुश होकर जाओ, मेरी आज्ञा है, आशीर्वाद है, और राम की ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि एक सेकंड के लिए भी उसे अयोध्या की याद ना हो। इसे मां कहा जाता है। पुत्र धर्म के लिए जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, तो मां प्रोत्साहन देती है, आज की मां की तरह नहीं कि उसे रोकती है। सुमित्रा ने यह नहीं सोचा कि 14 साल के लिए लक्ष्मण को क्या होगा, बेचारा भूखा प्यासा रहेगा या मर जाएगा, कभी नहीं। उन्होंने यही सोचा कि जो भगवान गर्भ में रहने वाले बालक की यदि रक्षा कर सकते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए जो जा रहा है उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे? बताइए, 9 महीने तक बालक गर्भ में रहता है, कौन दूध पिलाता है उसे, कौन भोजन खिलाता है? उस माँ को भी नहीं पता होता है कि कितना भोजन उस बालक के मुख में जा रहा है। वह सारी अरेंजमेंट भगवान करते हैं। जब माँ के गर्भ में भगवान उस बालक की अरेंजमेंट करते हैं तो उनका भजन, उनकी सेवा करने के लिए जो निकला है उनकी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। सुमित्रा जी ने लखनलाल को कहा कि जाओ और भगवान की भक्ति करो, सेवा करो। और सुमित्रा ने संसार की माताओं को आदेश उपदेश दिया है कि वास्तव में अब तक मैं अपने आप को पुत्र वाली नहीं समझ रही थी, परंतु आज मैं पुत्र वाली हो गई, क्योंकि आज मेरा पुत्र रघुपति राम की सेवा करने के लिए जा रहा है।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जा तुसी तू होई।
आज मैं पुत्र वाली हो गई, क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र रघुपति राम का भजन करने के लिए जा रहा है। इस संसार में वही माँ पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिनका पुत्र राम और कृष्ण का भक्त है। और जो जिस माँ और पिता का पुत्र भक्त नहीं है उससे तो अच्छा है वो बांझ ही रह जाए।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जा तुसी तू होई।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जा सुसुत होई।
न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुख ते
लखन माँ सुमित्रा लखनलाल को उपदेश दे रही है। लक्ष्मण तू क्या समझ रहा है, राम कई कई के कहने से वन में जा रहे हैं? नहीं, वे भगवान है, परम ईश्वर है, उसे कोई वन में भेज नहीं सकता है। वास्तव में राम का वन में जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वे तुम्हें सेवा देना चाहते हैं। तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है जिससे राम वन में जा रहे हैं।
तुम रे ही भाग राम वन जाई, दूसर हेत तात कछु नाही।
तुम्हारा भाग्य है इसलिए राम वन में जा रहे हैं, और कोई तात्पर्य नहीं है। और वास्तव में मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि आज से राम ही तुम्हारे पिता है और जगत जननी सीता ही तुम्हारी माँ है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हो, उससे 10 गुना ज्यादा राम और सीता की सेवा करना।
तात तुम्हारी माँ तुवे दे, पिता राम सब
पुत्र। राम ही तुम्हारे माँ और सीता ही तुम, राम ही तुम्हारे पिता और सीता ही तुम्हारी माँ है। हे पुत्र, तुम अयोध्या में रह रहे हो, परंतु वास्तविक अयोध्या अयोध्या वह है जहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं। जहाँ राम है वहाँ पर अयोध्या है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ पर ही दिन होता है।
अवधत हाज राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु।
अवधत हाज राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सित होई।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सित होई।
तो वही पुत्रवती हैं जिनका पुत्र भगवान का भक्त है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को पिता न कहते हुए असुर सम्राट कह रहे हैं, क्योंकि उनके पिता अपने पुत्र को भक्ति में लगाने की तो बात दूर रही, भक्ति से विमुख कराना चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने प्रश्न पूछा है कि संसार में तुमने 1 साल तक जो पढ़ाई की, जो शिक्षा ग्रहण की, उनमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तब इसका उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी इस प्रकार से इतना कुछ धन होने के बाद भी तुम दुखी हो। तुम्हारे जैसे लोगों को चाहिए कि हाथ में हरे कृष्ण की माला को लेकर वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। कल्पना करो उस समय हिरण्यकश्यप के ऊपर क्या बीती होगी। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि हे असुरवर्य, तत्साधु मनिये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद विघ्न ध्याम असत ग्रहात। इस संसार में सब लोग असत ग्रहण करने के कारण, इस संसार में 2 वस्तु हैं, एक सत और एक असत। सत क्या है? इस संसार में सत्य वस्तु क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये बाबा सत्य है, ये बापू सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, परंतु हम हमारी बुद्धि से कुछ भी कहेंगे तो वह नहीं चलेगा। आचार्य क्या कहते हैं? शिवजी के, एक बार शिवजी को पूछा गया, देवी पार्वती ने अपने प्रिय शिवजी को पूछा कि प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? तब शिवजी अपनी भारिया पत्नी को कहते हैं कि देवी मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें कहता हूं, उमा कहूं अनुभव में अपना, हे उमा मेरे जीवन का अनुभव कर रहा हूं कि संसार में सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सत्य एकमात्र हरि भगवान श्री राम और कृष्ण का भजन है, बाकी सब असत्य है। सत्य एकमात्र कृष्ण की भक्ति है। सत भगवान कृष्ण की भक्ति, क्योंकि सत्य एकमात्र कृष्ण है। ब्रह्मा जी शिव जी सभी देवता इस बात को भागवत के दसम स्कंद में स्वीकार करते हैं। सत्य व्रत परम दि सत्यम, भगवान को सत्य कह रहे हैं। सत एकमात्र कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं। तो ऐसी सत वस्तु को छोड़कर जो असत वस्तु को पकड़ते हैं, इसका अर्थ है कृष्ण को छोड़कर माया को पकड़ते हैं और माया जनित भोगों को पकड़ते हैं, तब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। भगवान से जब व्यक्ति विमुख होता है, कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से जब कोई जीव विमुख होता है, सत को छोड़ देता है, तब वे असत में आ जाता है और असत ग्रहात असत को ग्रहण करने के कारण सदा समुद्र विघ्न धीय, प्रहलाद महाराज कहते हैं उनकी बुद्धि सदा समुद्र उद्विग्न रहती है। इस संसार में प्राय सभी लोगों की बुद्धि उद्विग्न है, हाइपर टेंशन में है, क्या करे क्या करे, मंदी आ क्या करे, कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे, सब लोग टेंशन में है, सबकी बुद्धि उद्विग्न है। हम देखते हैं कुछ लोग ऑफिस से शाम को घर पर आते हैं, इतना टेंशन में होते हैं, इतना टेंशन में होते हैं, लगता है मनमोहन सिंह ने सारा भारत का बोझा इसी के सर पर रख दिया, पूरे भारत का वहीवट यही अकेला कर रहा हो, इतना टेंशन में होते हैं। इसे कहता है, इसे कहा जाता है सदा समुद्विग्न धीय, उसकी बुद्धि विचलित है। यद्यपि उनके पास बहुत धन संपत्ति सब कुछ है, परंतु बुद्धि विचलित है। क्यों? क्योंकि असत ग्रहात, सत को छोड़ दिए हैं, भगवान भगवान की भक्ति को छोड़कर असत वस्तु को स्वीकार किए हैं। असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण बुद्धि उद्विग्न हो जाती है, और बुद्धि जब उद्विग्न हो जाती है तो व्यक्ति गृहम अंधकूप, इस घर गृहस्थी में बहुत दुखी होता है। कैसा दुखी होता है? प्रहलाद महाराज इस घर गृहस्थी को अंधकूप कह रहे हैं, अंधेरा कुआं। आपने गांव में देखा होगा, गांव में कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिसमें पानी खाली हो जाता है। जब पानी खाली हो जाता है तो लोगों का आना जाना वहां पर बंद हो जाता है, इसलिए उसके आजू बाजू में बहुत घास उग जाते हैं, और घास इतने घास उग जाते हैं कि उस कुएं को घेर लेते हैं, फिर किसी को पता नहीं चलता है कि यहाँ कुआ है क्या है। तो कभी कभी होता है कि जब भेड़ बकरी इत्यादि घास चरने के लिए जाती हैं, तो उस कुएं के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा घास हरा घास लगा हुआ होता है, तो भेड़ और बकरी उस घास के लोभ के कारण वहां जाते हैं, जैसे ही घास को खाने का प्रयास करते हैं तो धड़ाम करके कुएं में गिर जाते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि सिर के बल कुएं में गिरते हैं, सिर फट जाते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज 4 साल के हैं, परंतु कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे भेड़ बकरी उस कुएं में गिरकर जो हालत होती है, वैसे ही संसार में घर गृहस्थी में पड़कर व्यक्ति की हालत होती है। जैसे भेड़ और बकरी दूर से चल रहे हैं तो लगता है कि यहाँ बहुत सुंदर हरी हरी घास है, आनंद आ गया यार, मजा आ गया, वैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि विवाह करके आनंद आ जाएगा, खुश हो जाएंगे, और विवाह करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। जैसे भेड़ बकरी उस हरी घास को खाने में सोचती है कि मैं वहां जाऊंगी खाऊंगी तो आनंद आ जाएगा, वैसे ही संसार के लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थी को स्वीकार करेंगे तो आनंद आ जाएगा, परंतु जैसे ही भेड़ बकरी उसे खाने के लिए जाती है तो सिर के बल गिरती है, पटकती है, वह रोती है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति इस अंध कुएं के समान घर गृहस्थी में फंस जाता है, आ जाता है, तो उस भेड़ बकरी की तरह ही वह दुखी हो जाता है। यह घर गृहस्थी कैसी है? कहते कुएं के समान है। जैसे कोई भेड़ और बकरी कुएं में गिर गई है तो बेचारा अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वैसे ही जो लोग इस घर गृहस्थी में फंस गए हैं बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक आचार्य तो कहते हैं यह घर गृहस्थी दलदल के समान है। दलदल कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिल्मों में तो सब लोग ने देखा होगा। दलदल ऐसा होता है कि व्यक्ति जब दलदल में गिरता है तो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना अंदर घुसते जाता है और अंत में पूरा अंदर चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। घर गृहस्थी में व्यक्ति फंसा हुआ है और फंसे फंसे यदि बाहर निकलना भी चाहे तो वो उसमें इतना अंदर जाते जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी जैसे कोई भेड़ बकरी कुएं में गिर गए हैं तो कुछ लोग रास्ते से जा रहे हैं तो उसे बचाने के लिए रस्सी डालते हैं उस भेड़ और बकरी को बाहर निकालने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ही संसार में कुछ लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, उसे बाहर निकालने के लिए हमारे इस्कॉन के भक्त जाते हैं और रस्सी छोड़ते हैं, भागवत और गीता रूपी रस्सी छोड़ते हैं। परंतु दुर्भाग्यशाली संसार के जीव के लोग जाते हैं, रस्सी छोड़ते हैं, फिर भी वह अंधेरे कुएं में गिरे हुए गृहस्थ उस रस्सी को पकड़ते नहीं हैं। अब क्या करें, फंसे हुए हैं, रस्सी फेंक रहे हैं, उसे चाहिए कि रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाए। परंतु प्रश्न पूछते हैं, रस्सी किसने फेंकी, रस्सी सही है कि गलत है, ये अच्छी है कि बुरी है, उसमें भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो सब लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और हितवात्मपातम अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, अपना पतन हो रहा है। तो असत ग्रहण, असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण बुद्धि विचलित है और व्यक्ति अंधकूप में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और ऐसे फंसे हैं। वास्तव में ये घर गृहस्थी ऐसी है जो व्यक्ति को इतना दुखी करती है, परंतु ऐसा बांध कर रखते हैं कि व्यक्ति उसे निकल भी नहीं सकता है। व्यक्ति ऑफिस से घर पर आता है, उसे पता है कि घर पर पत्नी के द्वारा दुख मिलेगा, बच्चों के द्वारा दुख मिलेगा, लेकिन फिर भी शाम को उसी घर पर वापस लौटता है। माया की बंधन पकड़ इतनी मजबूत है। जेल में, कारागार में किसी को बंद करते हैं लोहे की जंजीर से, वे तो दिख रही है और व्यक्ति एक बार उसे तोड़कर भाग सकता है, परंतु किसी की हिम्मत है कि घर गृहस्थी पत्नी और बच्चों की कड़ी को तोड़कर कोई भाग सके? कोई नहीं भाग सकता है। माया का बंधन है, चाहते हुए भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है, दुख का अनुभव करता है परंतु फिर भी छोड़ नहीं सकता। तो व्यक्ति को चाहिए, जो लोग इस अंधेरे कुएं में फंसे हैं, घर गृहस्थी में फंसे हैं, उसे चाहिए कि वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वह वन में चले जाए। वनम गतो, वन में क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि इस संसार में बहुत माया है और माया जनित वस्तु है। वन एक ऐसी वस्तु है जहां जाकर व्यक्ति सत्व गुण में रह सकता है और सत्व गुण में रहकर हरिम आश्रयत भगवान की भक्ति कर सकता है। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए किस कौन से वन में जाना है, गिरनार की तलेटी में जाना है कि जूनागढ़ जाना है, तब कहते हैं हरिम आश्रयत, और कोई वन में नहीं, वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाकर हरिम आश्रयत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ये लोग मंदिर में जाना और वृंदावन जाने के लिए क्यों कहते हैं, मन चंगा तो कथोटी में गंगा। मन यदि चंगा है, शुद्ध है, तो कथोटी में गंगा, घर पर गंगा है, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? परंतु वे लोग नहीं जानते हैं चंगा मन किसे कहा जाता है, चंगा मन कब बनता है। एक बार ऐसे ही एक राजा के मन में प्रश्न उठा, उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान से मिलना है और भगवान से मिलने के लिए उनको विचार आया कि जंगल में जाना पड़ेगा। परंतु सुबह उठे तो विचार बदल गया, किसी ने सुना दिया होगा कि मन चंगा तो कथोटी में गंगा, अपना प्लान चेंज किया जंगल में और मंदिर में जाना बंद। अब क्या करें? तब एक भक्त को पता चला कि राजा को भगवान की प्राप्ति करनी है और अभी भी राज कारोबार में फंसा है। तब भक्त उठहारा बनकर, ऊंट बेचने वाले जो होते हैं उसे उठहारा कहते हैं, तो ऊंट बेचने वाले का रूप धारण कर लिया और राजा के राज्य में आया। और राजा के राज्य में सभी घरों में जा जाकर पूछने लगा खटखटाकर कि आपने मेरे ऊंट को देखा, आपने मेरे ऊंट को देखा। गांव के लोग परेशान हो गए, भाई हमारा घर का दरवाजा इतना छोटा सा है, यहां पर कैसे ऊंट आ सकता है, कम से कम बुद्धि तो लगाओ। फिर भी ये सभी घर में जा जाकर पूछता है, आपने मेरे ऊंट को देखा, मेरा एक ऊंट घूम गया है। कहा कि हमारी छोटी सी झोपड़ी में आपका ऊंट कैसे आ सकता है। फिर भी ये बंद नहीं हुआ, बारंबार सबके घर में पूछता रहा। प्रजा विचलित हुई, दुखी हुई और सारी प्रजा राजा के पास जाकर शिकायत की कि न जाने कौन आ गया है हमारे गांव में, गांव में सबको परेशान कर रहा है, मेरे ऊंट को देखा, ऊंट को देखा। राजा ने कहा बुलाओ उसे राजसभा में। उस ऊंटहारे को राजसभा में बुलाया गया। राजा ने कहा क्यों परेशान कर रहे हो। कहा कि मेरा ऊंट घूम गया है, ऊंट को ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा अरे मूर्ख, जानते नहीं वो ऊंट कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऊंट किसी की झोपड़ी में कैसे आ सकता है। तब उस ऊंटहारा ने इतना ही कहा कि राजन मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान विभु है, इतने बड़े भगवान आपके छोटे से कमरे में कैसे आ सकते हैं। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में, वृंदावन में जाना होगा, आपके छोटे से घर में भगवान नहीं आ सकते हैं। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि घर को छोड़कर वृंदावन जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे वृंदावन कैसे जाएंगे, डरो मत। यदि आप वृंदावन नहीं जा सकते हो तो ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने सभी जगहों पर, सभी देशों में और सभी शहरों में वृंदावन का ही एक हिस्सा लाकर रख दिया है इस्कॉन सेंटर के रूप में। हमारे मुंबई में श्री राधा गिरधारी मंदिर मीरा रोड, श्री राधा रास बिहारी जुहू, श्री राधा गोपीनाथ ग्रांट रोड, ये जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, ये वृंदावन से अभिन्न है, वृंदावन से कम नहीं है। इसलिए यदि कोई वृंदावन नहीं जा सकता है तो कम से कम इस्कॉन के मंदिर में तो जाए, परंतु इतना तक नहीं कर सकते। यदि रोज न जा सके तो कम से कम रविवार को तो जाए, परंतु दुर्भाग्य है कि इतना भी कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, पिताजी आपको चाहिए कि आप वृंदावन चले जाओ। जब प्रहलाद महाराज ने इतना कहा, नारद मुनि कहते हैं श्रुत्वा पुत्र गिरो देत्य परो पक्ष समाहिता जहां सबुद्धि बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे सबसे अच्छी शिक्षा यह लगी कि हाथ में माला झोली लेकर आप मंदिर में बैठ जाओ, तब हिरण्याकश्यपु खड़खड़ा से हंसने लगा और हंसते हुए हिरण्याकश्यपु ने कहा कि ये तो बालकों की बुद्धि दूसरे के कहने पर तुरंत बदल जाती है। जैसे बालकों को चॉकलेट देकर कहा जाए कि आप यह बोलो तो वह बोलने लगते हैं, कहते हैं ये तो बालक है, इसकी बुद्धि दूसरों को भड़काने से, दूसरों के कहने से तुरंत बदल जाती है। इसलिए हिरण्याकश्यपु तुरंत इस बालक के गुरु षंड और अमरक को बुलाया, षंड अमरक यहां आओ। षंड और अमरक आए तो हिरण्याकश्यपु ने कहा ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, ये मुझे मंदिर में जाने के लिए कह रहा है, संसार के लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे भगवान मानते हैं और मुझे विष्णु की शरण में जाने के लिए कह रहा है। सम्यक विधार यथा बालो गृह के द्विजाति भी विष्णु पक्षे परिचन्ने न विद्य तास्य धीर्यता। जरा ध्यान रखो, गुरुकुल में ध्यान रखो, आपको आप इसे अच्छी शिक्षा दो। षंड और अमर ने कहा कि हमने तो कभी उसे ऐसा नहीं सिखाया। तब हिरण्याकश्यपु ने कहा कि विष्णु पक्षे प्रतिचन्ने तुम नहीं जानते हो, ये विष्णु के जो भक्त हैं वे प्रतिचन्ने छन्न अपना रूप बदल बदल कर संसार में प्रचार करते हैं। ये विष्णु के भक्त कम नहीं है, प्रति क्षण अपना रूप बदल बदल कर प्रचार करते हैं। ध्यान रखो, इस्कॉन के कोई लोग आए होंगे, प्रचार करके चले गए होंगे। ध्यान रखो, इसकी बुद्धि बिगड़ न पाए, ये सत्य है। प्रभुपाद जी इसके प्रपट में तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना हो और रूप बदलना भी पड़े तो रूप बदल के भी प्रचार किया जा सकता है। भक्ति करने के लिए पैंट शर्ट पहनना पड़े तो पहन लेना चाहिए। तो ध्यान रखो, प्रहलाद की कोई बुद्धि बिगाड़ रहा है। इस प्रकार कह के हिरण्यकश्यप वहां से चले गए। गृह मानित माहुय प्रहलादम दैत्य याजका प्रशस्य सदलक्षण्या वाचा समुपृच्छन्त साम भी। हिरण्यकश्यप जब चला गया, शंड और अमर दोनों प्रहलाद को लेकर खड़े हैं और प्रहलाद को पूछ रहे हैं, बेटा सांत्वना देकर समपृच्छत प्रश्न पूछा, कैसे? सलक्षणिया वाचा, मधुर वाणी से। उन्होंने सोचा होगा कि यदि क्रोधित होकर कहेंगे तो ये डर जाएगा, इसलिए प्रेम से पूछा कि बेटा प्रहलाद बताओ, ये आपकी बुद्धि किसने बिगाड़ी है? कौन आया था? कौन से सेंटर से आए थे? प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बोले। वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथयमा मृषा बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्यय। प्रहलाद मुझे ये बताओ कि आपकी इस प्रकार से बुद्धि किसने बिगाड़ी? भगवान की भक्ति करने के लिए प्रहलाद कह रहे हैं और शंड और गमर समझ रहे हैं कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। बताओ तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी? हे कुल नंदन, तुम तो कुल को आनंद देने वाले हो, कुल को दुखी क्यों कर रहे हो? हे कुल नंदन, बुद्धि भेद परकृत उताहो ते स्वतो भवन भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुनाम कुल नंदन। हे कुल नंदन, बताओ कौन आए थे, तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी, हे शंड जी, अमर जी, वास्तव में जिस भगवान से मोहित होकर, जिस भगवान की माया से यह सारा जगत मोहित है, उस भगवान के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर शंड अमर कुछ और पूछ रहे हैं और प्रहलाद महाराज कुछ अलग ही उत्तर दे रहे हैं। शंड अमर ने पूछा कि तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। रागे प्रहलाद महाराज कहते हैं, स यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धि विभिद्यते अन्य एष तथान्योहम इति भेदगता सती। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिस भगवान की कृपा से जिसकी बुद्धि पशु के समान हो चुकी है, जिसकी पशु बुद्धि हो गई है, वह पशु बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ये सत्य है, इस संसार में कुछ लोगों की बुद्धि पशु के समान होती है। पशु की बुद्धि का अर्थ होता है, पशु का केवल चार ही कार्य होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इस संसार में कुछ मनुष्य भी यही करते हैं, आहार भोजन खाते हैं, निद्रा सोते हैं, भय का अर्थ होता है डरते हैं हमारा धन कोई चोरी करके न लेकर जाए, कोई उठ न जाए, और मैथुन बच्चे पैदा करते हैं। कुछ मनुष्य ये चार के अलावा कुछ करते ही नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं नहीं हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। परंतु ये ऑफिस जाना, स्कूल कॉलेज में पढ़ना, अल्टीमेटली ऑफिस जाने के बाद क्या होता है, धन कमाते हैं और उस धन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? या तो विवाह करते हैं, या तो घर लेते हैं, या तो भोजन करते हैं। अल्टीमेटली संसार में व्यक्ति यह चार ही कार्य कर रहा है। जो लोग आहार, निद्रा और भय मैथुन में फंसे हुए हैं, वे लोग पशु के समान हैं। मैं नहीं कहता हूं, महाभारत में कहा गया है, आहार, निद्रा, भय मैथुनम च सामान्य यतत पशुभेर नराणाम। परंतु यदि कोई मनुष्य धर्म का पालन करे तो वह पशु की योनि से ऊपर उठ सकता है। धर्मो ही एको अधिको विशेष। तो मनुष्य जीवन मिला है धर्म का पालन करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। इसलिए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और मनुष्य जीवन का सदुपयोग हम तब कर सकते हैं जब भगवान की कृपा हो, और भगवान की कृपा होती है योग्य गुरु के आश्रय में जाकर। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा से पशु बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। इसका अर्थ प्रहलाद महाराज शंड और अमर को उत्तर दे रहे हैं कि हे गुरुजी, जो लोग इस संसार में सबकी बुद्धि को घुमा रहे हैं वही भगवान मुझे यह बुद्धि प्रदान किए हैं कि मुझे कृष्ण और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी दुरत्यया अनुक्रमणो निरूप्यते। वास्तव में भगवान की अनेक शक्ति है और उनमें एक शक्ति है माया, जिस माया से यह भौतिक संसार का निर्माण होता है। और इस संसार के प्राय सब लोग इस माया नामक शक्ति में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और अपनी बुद्धि पर माया का आवरण होने के कारण भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। मुह्यंति यत वर्मणि वेदवादिनो ब्रह्मादयो येष विनत्ति मे मतिम। इस संसार के लोगों की बात छोड़ दीजिए, देवताओं की बात छोड़ दीजिए, देवताओं में भी जो सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी कभी कभी माया में फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की कथा सुनाते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका गए और द्वारका के द्वार पर जब पहुंचे तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया, कहा कहां जाना है? कहा कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा रुको, हम भगवान को पूछ कर आते हैं। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास अंदर गए, कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं और थोड़ा अहंकार आ गया है, अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसे जाकर कहो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल वापस ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी के पास आकर कहे कि आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी ने कहा कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या 10-15 है? चार मुख वाला ब्रह्मा जाओ कहो, चार मुख वाला ब्रह्मा आया है। द्वारपाल कृष्ण के पास गए, कृष्ण को कहा चार मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है उसे अंदर आने दो। तो ये चार मुख वाले ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण द्वारका के महल में थे, उस महल में अंदर आए, तो ये चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने 8 मुख वाले ब्रह्मा जी का दर्शन किया जो वहां पर पहले से खड़े थे। कुछ 10 मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े थे, कुछ 20 मुख वाले खड़े थे, कोई 100 मुख वाले खड़े थे, कोई 500 मुख वाले खड़े थे। ये ब्रह्मा जी तो सबको देखकर बेहोश मूर्छित होकर गिर गए, चारों सिर चकरा गया। और तब पता चला कि बाप रे बाप, मैं तो सबसे छोटा ब्रह्मा हूं, मेरे से बड़े बड़े ब्रह्मा यहां बैठे हैं। ये सत्य बात है, भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का जन्म होता है और उस अनंत अनंत ब्रह्मांड को चलाने के लिए अनंत अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मा है। ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान नियुक्त करते हैं। तो ये जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी जो है वे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, और हमारा जो ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा ब्रह्मांड है। बाकी के जितने भी ब्रह्मांड है हमारे से बड़े ब्रह्मांड है, इसलिए उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ ब्रह्मा को 8 सिर की जरूरत है, किसी को 10 सिर, किसी को 500 सिर। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो वे भी मोहित हो गए, भगवान की माया से ब्रह्मा भी मोहित है। तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे साधारण लोगों की तो क्या बात करना। भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेन्ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरय। बड़े बड़े देवता और ब्रह्मा भी भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। यथा ब्राह्म्य तयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निदो तथा मे विद्यते चेतश्चक्र पाणे यदि छया। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, आप यही कह रहे हो कि मेरा भगवान के प्रति लगाव क्यों है, इसका उत्तर यह है कि आपने कभी चुंबक को देखा है। गुरुजी शांड और अमर को कह रहे हैं, गुरुजी आपने कभी चुंबक को देखा है? कहां? चुंबक को यदि आप लोहे के पास लेकर जाओ तो लोहा ऑटोमेटिक चुंबक के पास चिपक जाता है, उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोहा जो है चुंबक के प्रति ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण में ऐसे गुण हैं, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, चुंबक की तरह खींच लेते हैं जीवों के मन को। तो शांड और अमर ने पूछा, तो हमारे मन को क्यों नहीं खींच रहे हैं? तुम्हारे कृष्ण इतने आकर्षक हैं, इतने लीलावान हैं, इतने गुणवान हैं, तो तुम उसके ओर खींच गए, हम क्यों नहीं खींच रहे हैं? हमें हमारा लगाव क्यों नहीं है तुम्हारे कृष्ण के प्रति? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपके लोहे में जंग पकड़ लिया है, काट लग गया है आपके आपके ऊपर। ये सत्य बात है, लोहा जो है चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, परंतु उसके ऊपर यदि जंग लग जाए तब उसकी आकर्षित शक्ति समाप्त हो जाती है। वैसे ही संसार में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं, इतना सुंदर रूप है, इतने सुंदर गुण है, स्वाभाविक व्यक्ति उसके ऊपर आकर्षित हो सकता है, हम भी भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, परंतु हमारी बुद्धि और हमारे चित्त के ऊपर जंग लग गया है, मट्टी लग गई है। जैसे चीत के ऊपर, जैसे दर्पण कांच के ऊपर मट्टी लग जाए और फिर आप कांच के सामने खड़े रहो तो अपना सिर भी नहीं दिखाई देगा। जब तक कांच को साफ नहीं किया जाएगा तब तक अपना स्वरूप उसमें देख नहीं सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब तक इस चीत रूपी दर्पण का मार्जन नहीं किया जाएगा, इस चीत रूपी दर्पण को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते हैं और भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। तो प्रश्न होता है, इस जंग को निकालने के लिए क्या करना होगा? इस चीत रूपी दर्पण को, चीत को साफ करने के लिए क्या करना होगा? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्यव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान आकर्षित है, भगवान सभी को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, परंतु हमारा आकर्षण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे चित्त के ऊपर मैल जम गया है, पाप की वृत्ति जम गई है। यदि उसे साफ करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं, मेरे नाम का जप करना होगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो उसके ऊपर लगा हुआ जितना भी जंक है वह सब निकल जाता है और धीरे धीरे जप करते करते व्यक्ति इतना शुद्ध, इतना पवित्र हो जाता है, फिर वह स्वाभाविक भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस प्रकार प्रहलाद महाराज उत्तर दिए कि भगवान में अनंत अपार गुण हैं, इसलिए मैं उनके प्रति आकर्षित हूं। तब नारद मुनि राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद उवाच, एतावद् ब्रह्मणा योक्ता वीर राम महामती तम सन्निवर्ष्य कूपीत सुदिनो राजसेवक। ब्राह्मणा एतावत उक्त्वा, इस प्रकार ब्राह्मण शंड और अमर के पूछने के बाद वीर राम महामति प्रहलाद महाराज चुप हो गए। प्रहलाद महाराज चुप हो गए इसलिए प्रहलाद महाराज को महामति कहा जा रहा है। महामति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, और महामति का अर्थ होता है महान बुद्धिमान। प्रहलाद महाराज तो यहां पर चुप हो गए, फिर भी महाबुद्धिमान क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ यह है कि कभी कभी नहीं बोलना वही महाबुद्धिमानी है। कभी कभी कुछ लोगों के सामने नहीं बोलना उसमें ही बहुत बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती है। प्रहलाद महाराज ने देख लिया कि ये शरण और अमर कभी सुधरने वाले नहीं है, इसलिए हरि नाम में नौवा अपराध नहीं करना चाहते हैं। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना नहीं चाहते थे, इसलिए वीर राम वे चुप हो गए। तम सन्निवर्तस्य कुपित सुदिनो राज सेवक, और उस राज सेवक शंड और अमर प्रहलाद महाराज को डांटने लगे। पहले प्रेम से समझाए, अब डांटने लगे। डांटते हुए क्या कहे, आनीय तामरे वेत्रम अस्माकम यशस्कर, ये अपने कुल का यश बिगाड़ने वाला विष्णु की भक्ति कर रहा है, एक लकड़ी लेकर आओ, इस लकड़ी से प्रहलाद को पीटा जाएगा। जोर जोर से बोलने लगे, जोर से इसलिए बोल रहे थे ताकि प्रहलाद सुनकर डर जाए, परंतु डरने वाले थोड़ी न थे। कहा लकड़ी लेकर आओ, दो तीन जन गए लकड़ी लेकर आए, ये जोर जोर से बोल रहे, कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थो स्यो दितो दम, अरे तू तो कुलंगार है, अपने कुल का आग लगाने वाला है। वाह, भगवान की भक्ति करने चला है और गुरु जी कह रहे हैं कि तू कुल को बिगाड़ने वाला है, कुल में आग लगाने वाला है। वास्तव में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति से विमुख करते हैं। ये शंड और अमर प्रहलाद महाराज के कुल गुरु थे, और प्रहलाद महाराज के पिता के गुरु शंड और अमर के पिता थे। इस संसार में दो प्रकार की परंपरा होती है, एक होती है गुरु शिष्य परंपरा और एक होती है बाप बेटे की परंपरा। संसार में प्रायः सब लोग इस बाप बेटे की परंपरा में फंसे हुए हैं। पिताजी ने जिससे दीक्षा लिया है, फिर आगे चलकर उनके लड़के उन गुरु के लड़कों से दीक्षा लेते हैं, फिर वे शुद्ध हो, पवित्र हो, भक्त हो या न हो, परंतु ऐसी परंपरा में फंसना नहीं चाहिए। अब देखिए, शंड और अमर प्रहलाद महाराज की बुद्धि बदलना चाहते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शंड और अमर ने कहा कि भगवान विष्णु का नाम लेना बंद करो। प्रहलाद ने कहा, मैं बंद नहीं करूंगा। इस संसार में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप वैसे गुरु की शरण लो जो कृष्ण भक्ति में सहायक हो, परंतु वो लोग उत्तर देते हैं कि ये हमारे कुल गुरु हैं, हमारे बाप दादा की परंपरा के गुरु हैं, हमारे पिता ने भी इसे गुरु बनाया था तो हम भी इसे गुरु बनाए। अरे हमारे पिता कुछ गलत कर सकते हैं तो क्या हमें भी गलत करना है? देखिए, हम सब लोग बिजनेसमैन हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं। यदि हमारे पिताजी कुछ बिजनेस करते थे और वे चल बसे, स्वर्गवास हो गया, अब कुछ समय के बाद उस बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? यदि उस बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस बिजनेस को बदल देगा, परंतु मूर्ख तो यही कहेगा, नहीं, बाप का धंधा है, बाप का है, इसलिए करना है, कैसा भी है, खाली हो जाएगा, उठ जाएगा, परंतु छोड़ेगा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो योग्य है, देश काल पात्र के अनुसार जो शुद्ध है, उस बात को स्वीकार करे। हो सकता है कि पिताजी कुछ अज्ञान में थे, पिताजी ब्रह्म तो नहीं थे कि उन्होंने शुद्ध मार्ग स्वीकार किया, पिताजी कुछ अज्ञान में थे, उन्होंने कुछ गलत स्वीकार किया, परंतु यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम गुरु बदल सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य थे, परंतु प्रहलाद महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे बुद्धिमान थे। अब प्रहलाद महाराज यह नहीं कहे कि नहीं नहीं, मैं तो पिताजी ने जो गुरु किया है वही मैं करूंगा। प्रहलाद महाराज ने यह भी नहीं कहा कि मैं बाप को बदलना नहीं चाहता हूं। संसार में कुछ लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कृष्ण की भक्ति कीजिए, तो कहते हैं हम हमारे बाप को कैसे बदलेंगे, परंतु वे जानते नहीं है सबके बाप परम ईश्वर परम पिता एकमात्र कृष्ण है। पिता मस्य जगतो माता धाता पितामह, पिता होके भी पिता भगवान श्री कृष्ण है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो योग्य गुरु है उनकी ही शरण लेनी चाहिए। तो दुर्बुद्धे चतुर्थ कहते हैं दुर्बुद्धि प्रहलाद तू नहीं मान रहा है, अब हमें चौथा तरीका लेना होगा। किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए चार तरीके होते हैं, श्याम दाम भेद और दंड। क्षण और अमर श्याम दाम और भेद से प्रहलाद को समझाए। अब कह रहे हैं चतुर्थो अस्योदितो दमः, अब हम चौथा तरीका दंड देंगे तुम्हें। देती ये चंदन वने जातो ये अयम कंटक द्रुम, अरे तुम तो देतियों के कुल में। कहते देतियों का कुल कैसा है, असुरों का कुल कैसा है, कहते चंदन के वृक्षों के समान। कहते हम जैसे असुरों के चंदन जैसे वृक्षों के जंगल में तुम एक कंटक कांटे का वृक्ष बबुल का वृक्ष पैदा हुए हो। ये असुर लोग अपने आप को चंदन का वृक्ष कह रहे हैं और प्रहलाद को बबुल का वृक्ष कह रहे हैं। कहते हैं देते चंदन वने, देतियों के इस चंदन वन में तुम बबुल के वृक्ष के समान पैदा हुए हो, इसे तो अच्छा है इस बबुल के वृक्ष को काट कर फेंक दिया जाए। इति तम विविधोपाये विषयम तर्जनादि भी प्रहलादम गृहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम। शंड और अमरक ने उस लकड़ी से मारा नहीं क्योंकि राजा का पुत्र था, कैसे मारे, केवल डांटा, फिर भी प्रहलाद बदले नहीं। तब शंड और अमरक उसे फिर से अपने गुरुकुल में वापस लेकर गए और गुरुकुल में वापस लेके जाकर त्रिवर्गस्य तीन वर्ग की शिक्षा दी। त्रिवर्ग का अर्थ होता है धर्म अर्थ और काम। मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम। मनुष्य यह पांच चीज कर सकता है, कुत्ता बैल और गधा ये पांच चीज नहीं कर सकता है। मनुष्य का जन्म स्पेशल इसी के लिए हुआ है, मनुष्य ये पांच चीज पूर्ण रूप से कर सकता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब इस भौतिक जगत की वस्तु है और प्रेम भगवान के धाम को पहुंचाने वाली वस्तु। तो शंड और अमर इस पांच वस्तु में से केवल तीन का ही उपदेश दिए, धर्म अर्थ और काम। धर्म का अर्थ होता है पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, माता के साथ कैसे रहना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है धन कैसे कमाना चाहिए और काम का अर्थ होता है इस धन को कैसे भोगतना चाहिए। खैर वे लोग तो तीन की भी शिक्षा देते हैं, आज के गुरुकुल और स्कूल में तो केवल एक ही शिक्षा दी जाती है, काम कैसे किया जाए, संसार को कैसे भोगा जाए। न तो धर्म की कोई शिक्षा है न तो अर्थ की कोई शिक्षा है, किस प्रकार इसे भोगा जाए। परंतु वास्तविक शिक्षा है मोक्ष और प्रेम की शिक्षा। तो ये तीन शिक्षा देते रहे और गुरुकुल में फिर से लेकर गए और ये तीन प्रतिदिन यही समझाते थे कि किस प्रकार से राज्य चलाना चाहिए, किस प्रकार से तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, तुम्हारे पिताजी की भक्ति करनी चाहिए। यह सिखा से सिखाते दूसरा एक वर्ष बीत गया, प्रहलाद महाराज 5 साल के हो गए। जब दूसरा वर्ष बीता नारद मुनि कहते हैं तत एनम गुरुर ज्ञात्वा ज्ञात गेय चतुष्टयम दैत्येन्द्रम दर्शयामास मातृमूर्ष्ट अलंकृतम। जब एक साल बीत गया फिर से वेकेशन हुआ, फिर से छुट्टी का दिन आया और फिर से शंड और अमर प्रहलाद को उसके घर पर छोड़ दिए। प्रहलाद को जब उसके घर पर छोड़ दिए तो मातृर मुष्ट समलंकृतम, तो प्रहलाद की माता ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत नहलाया। होता है बालक जब गुरुकुल में होते हैं तो अपने आप ठीक से स्नान नहीं करते हैं, इसलिए माँ का स्वभाव होता है कि कई दिनों के बाद बालक आया है तो अपने हाथ से बालक को स्नान कराती है। तो मां कयाधु प्रहलाद को बहुत अच्छी तरह से स्नान कराई, बहुत अच्छा कपड़ा पहनाया, सुंदर अलंकार पहनाए, बाल संवार दिए, तेल डाल दिया और बहुत सुंदर तैयार करके प्रहलाद को अपने पिता के पास भेजा। अब ये दूसरी बार प्रहलाद महाराज ठीक से पाउडर वाउडर लगाकर हिरण्यकश्यप के पास आए और इस बार प्रहलाद महाराज 1 साल बड़े हो गए थे, इसलिए आकर हिरण्यकश्यप के पास आकर क्या किया, पादयो पतितं बालं प्रति नंद्य शिशासुर। उस असुर हिरण्यकश्यप के चरण में प्रहलाद महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। देखिए पिता कैसा भी हो प्रणम्य अवश्य है, उसे प्रणाम जरूर करना चाहिए। रोज सुबह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र अपने आदर्श से सिखाते हैं, प्रातः काल उठके रघुनाथा, रघुनाथ प्रातः काल उठकर ना वही कहते माथा अपने नाव को अपनी माँ और पिता के चरणों में नवाते थे। इस संसार में जब ऐसा उपदेश दिया जाता है तो आजकल के जो लड़के हैं वे कहते हैं कि हम हमारे पिता को प्रणाम करेंगे, वे तो हिरण्यकश्यप जैसे हैं। एक बार एक लड़के ने कहा था जो दो तीन महीने से भक्ति में आया है, दो तीन महीने से हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और उनके पिताजी भक्ति नहीं करने देते होंगे, कहते हैं पिता को मेरे पिता को प्रणाम करूं वे तो हिरण्यकश्यप जैसे हैं। परंतु देखें यहां पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी ऐसे दंडवत कर रहे हैं। पादयो पतितम बालम, उस बालक ने प्रहलाद महाराज ने उस असुर के चरणों में प्रणाम किया। वास्तव में पिता कैसे भी क्यों न हो, यदि पिता के हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो निश्चित पुत्र के जीवन में प्रगति होती है। भागवत में यह प्रसंग है, माता और पिता का हृदय से आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित उसके ऊपर कृपा होती है होती है होती है। भागवत में एक कथा आती है, एक राजा थे जिसका नाम था नभग। राजा नभग के चार पुत्र थे और चार में से सबसे छोटा था नाभाग। ये छोटा बालक जो सबसे छोटा था वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गया और बाकी के तीन जो थे वे बड़े हो चुके, पिताजी बूढ़े हो चुके थे। तो ये तीन पुत्रों ने आपस में बैठकर मीटिंग की कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमारा विवाह हो गया है, इसलिए हम सब लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए पिताजी की संपत्ति को बांटा जाए। पिता बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वे क्या बोले। तो पिताजी की संपत्ति को का तीन भाग किया। वे बेचारा चौथा भी उसका भाई था परंतु वे गुरुकुल में गया था, उसका भाग नहीं बनाया, उनका हिस्सा नहीं बनाया। पिताजी की संपत्ति का तीन हिस्सा किया और तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। और नाभाग जब शिक्षा प्राप्त करके घर पर आया, देखा तो सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। तीनों भाइयों को बुलाकर कहा कि भाई मैं तो गुरुकुल गया था, आपने सब धन बांट लिया, मेरे हिस्से में क्या है। तब तीनों ने मिलकर कहा कि आपके हिस्से में है ना, हमने आपका भी हिस्सा बनाया है, आपके हिस्से में पिताजी आए हैं। धन ये तीनों ने बांट लिया और बूढ़े पिताजी को नाभाग को दे दिया, ये आपके हिस्से में, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। परंतु नाभाग ने उसे स्वीकार किया। जब नाभाग ने अपने बूढ़े पिता को स्वीकार कर लिया, पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। नभग इतने प्रसन्न हुए, बेटा डरो मत, यद्यपि तुम्हारे भाइयों ने अनीति करके सारा धन लेकर चले गए हैं, डरो मत, मेरा आशीर्वाद है तुम पर, क्योंकि तुम्हारा जीवन नीति के अनुसार बीत रहा है। एक काम करो, चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में कई दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर वे एक मंत्र में गलती कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें वो मंत्र बताता हूं, वहां पर जाकर वो मंत्र का उच्चारण कर देना तो वे लोग आपको बहुत धन और प्रदान करेंगे। नाभाग गए ब्राह्मण के पास, चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और वहां पर वे बहुत टेंशन में थे, ये यज्ञ क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है। नाभाग ने जाकर उसे ये शुद्ध मंत्र बताया, यज्ञ पूर्ण हुआ। तब उस यज्ञ में जो धन संपत्ति सोना गहना बचा, ब्राह्मणों ने कहा कि नाभाग ये संपत्ति आप रखो। ब्राह्मण चले गए और नाभाग यह धन संपत्ति का पोटला बनाकर अपने घर पर आ रहा था। उस समय एक भयंकर असुर के समान भयंकर व्यक्ति उनके सामने आया, काले पहाड़ के समान व्यक्ति आया और कहा कि ये धन तुम नहीं ले जा सकते हो। नाभाग ने कहा कि भाई ये तो ब्राह्मणों ने मुझे दिया है। कहा कि ये धन नहीं लेके जा सकते हो, ये धन का हिस्सा मेरा है। कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं, तो जाओ अपने पिता को पूछो इस धन का हिस्सेदार कौन है। नाभाग वे धन को लेकर अपने घर पर तो आया, हमारी तरह कोई होता तो फिर वापस जाता ही नहीं, कहीं जाकर छिप जाता, धन का गठड़ा लेकर आया, पिता को पूछा कि पिताजी ये धन तो लेकर आया हूं परंतु इसका वास्तविक हिस्सेदार कौन है? तब पिता ने कहा कि इसके वास्तविक हिस्सेदार शिव जी है। यज्ञ के बाद जो धन बचता है उसके हिस्सेदार शिव जी है। तब वे उस धन को लेकर वापस आए और वापस आकर उस व्यक्ति को दे दिया, इसके हिस्सेदार शिव जी है। तब वो जो असुर के रूप में आया था उसने अपना रूप ले लिया, वास्तव में वो शिव जी थे। और शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी नीति से प्रसन्न हूं, तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से प्रसन्न हूं, इसलिए यह धन तो तुम लेकर ही जाओ, इससे 10 गुना धन मैं तुम्हें देता हूं और इसी के साथ साथ वेदों का ज्ञान भी देता हूं। वे तीनों भाइयों के पास मिलकर जितनी संपत्ति नहीं थी उससे 10 गुना संपत्ति नाभाग के पास आ गई। भागवत के नवम स्कंद के प्रथम अध्याय की यह घटना है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन नीति के अनुसार बिताता है तो उसके जन्म उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। और भक्तों, धन कोई बड़ी वस्तु नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं और नीति से अपना जीवन बिताते हैं नाभाग की तरह, उसके घर पर शुद्ध भक्त का जन्म होता है। इसलिए नाभाग के पुत्र के रूप में महाभागवत अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ। अम्बरीश महाराज जिसके विषय में आया है कि सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, जो इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे फिर भी ऐसी भक्ति करते थे, महाभागवत थे, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति नाभाग को हुई। क्यों? पिता का आशीर्वाद, नीति के अनुसार जीवन। मैं यही कह रहा हूं कि पिता कैसे भी हो उसे प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पादयम पतितः बालो, प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यपु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रति नंद्य शिशासुर, और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया तो हिरण्याकश्यपु ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? परिश्वज्य चिरम दौरभ्या परमामाप निवृत्तिम। हिरण्याकश्यपु ने कहा चिरंजीवी रहो, आपकी उम्र लंबी हो। और प्रहलाद जैसे ही झुका, हिरण्याकश्यपु ने उसे उठाकर अपने गले में लगा लिया कि बहुत प्रेम करता था। हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसके प्रेम की सीमा बता रहे हैं कि अपने गले में कई मिनटों तक लगाकर रखा। आरोप्य अंक वग्राय मूर्धन्य शुक लाम्बु भी, और अपने पुत्र को गले पे लगाने पर इतना हर्ष हुआ, हर्ष के कारण हिरण्याकश्यपु की आंखों से अश्रु निकलने लगा और हिरण्याकश्यपु की आंख के आंसू से प्रहलाद के सारे कपड़े भीग गए। इतना आंसू निकला, इतना प्रेम था अपने पुत्र से। आसिंचन विकसद वक्तम ईदम आह युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर सारे वस्त्र प्रहलाद के भीग गए। तो प्रहलाद को फिर से अपने गोद में बिठाया और अपने गोद में बिठाकर हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को पूछ रहे हैं। हिरण्याकश्यपु वाच प्रहलादानुच्यतां तात स्वधितं केशिदूतमं कालेने तावतायुष्मन् यदशिक्षत गुरो भवान। हे युष्मन, हे चिरंजीव, हे प्रहलाद, तावत अब तक तुमने अपने गुरुकुल में शरण और अमरक से शिक्षा प्राप्त की है, तो हे पुत्र, हे तात, स्वधितम किश्चित उत्तमम, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की उसमें उत्तम शिक्षा कौन सी लगी? फिर से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लग रही है? प्रहलाद महाराज के मन में था कि यदि कह दूंगा तो फिर से ये लोग भड़केंगे। प्रहलाद महाराज ये नहीं सोचे कि झूठ बोलकर इसे कुछ बंद कर दूं, नहीं, वे तो सत्य पे अड़क थे। हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि सभी शिक्षाओं में सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? तब प्रहलाद महाराज निर्भय होकर, बिंदास्त होकर, निर्भय होकर उत्तर देते हैं। श्री प्रहलाद वाच भगवान के जो भक्त होते हैं निर्भय होते हैं, उसे डर नहीं होता है किसी का। कृष्ण भक्त बिंदास, कृष्ण भक्त बिल्कुल निर्भय होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है, जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, उसे तिल भार भी डरने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए मैं बैठा हूं। भगवान रक्षा करते हैं। जाको राके साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होई। भगवान के भक्त को मारने के लिए पूरा जगत भी एकत्रित हो जाए और मारने का प्रयास करे, पूरा जगत मिलकर भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। निर्भय होते हैं, अभय होते हैं। प्रहलाद महाराज अभय होकर, इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम जिस संस्था में हैं उसके आचार्य भी अभय चरणारविंद, उनका नाम भी अभय है। निर्भय होकर इस अभय चरण की संस्था में रहकर निर्भय होकर उपदेश देना चाहिए। प्रहलाद महाराज निर्भय होकर कह रहे हैं कि पिताजी आपको यही जानना है मुझे क्या अच्छा लगता है, मैंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, तो सुनिए।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतन वलक्षणा क्रियेत भगवती यद्धा तत्मन्ये धीतोत्तमम।
पिताजी आप पूछ रहे हो सबसे उत्तम क्या मुझे लगा, इस संसार में सबसे उत्तम मुझे भगवान विष्णु की भक्ति लगी। और भगवान श्री विष्णु की भक्ति में भी जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान विष्णु की सेवा करना, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। सत्य बात, इस संसार में सबसे अच्छा कार्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जब हम लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं तो कई लोगों का प्रश्न होता है, भाई हम लोग भक्ति क्यों करें। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति सबसे अच्छा कार्य है, तो हम भक्ति क्यों करें, क्या आवश्यकता है भक्ति करने की। भक्ति करने की सबसे पहली आवश्यकता कि हमें जो यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर भगवान की देन है, तो भगवान की देन होने के कारण इस शरीर का कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें। उदाहरण के तौर पर यदि हम ट्रेन से जा रहे हैं और किसी का फोन नंबर लिखना हुआ तो किसी से पेन मांगते हैं कि या पेन दीजिए फोन नंबर लिखना है, एक नंबर लिखकर हम जब पेन उसे वापस लौटाते हैं तब क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद। केवल एक छोटा सा नंबर लिखकर उस पेन को वापस लौटाते समय हम थैंक यू कहते हैं, केवल एक पॉइंट भी रिफिल का यूज नहीं किया है फिर भी हम थैंक यू कहते हैं। कल्पना करो जो भगवान कई कई वर्षों से सूर्य पानी हवा चंद्र ऑक्सीजन ये सब कुछ दे रहे हैं, क्या उसे थैंक यू कहने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को एक फोन नंबर लिखने के लिए हम पेन वापस करते हैं तो थैंक यू कहते हैं, आप कल्पना करो भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, भगवान ने कितनी हवा दी है हमें, इस हवा में कितना ऑक्सीजन है। ये तो तब पता चलता है जब हॉस्पिटल में किसी को अपने एडमिट करे और ऑक्सीजन की बोतल लगाए, कितना महंगा है ऑक्सीजन। यदि हिसाब जोड़ा जाए तो पूरा जीवन इस चमड़ी की जूती बनाकर भी हम भगवान को ऑक्सीजन का पैसा नहीं चुका सकते हैं। कितना ऑक्सीजन हवा दिए हैं, कितना पानी दिए हैं। आप यात्रा में जाओ कहीं रास्ते से पानी खरीदना है तो एक लीटर 10 रुपए का मिलता है, कितना पानी हम स्नान किए, कितना पानी बिगाड़े हैं, कभी भगवान ने हिसाब किताब मांगा है। इतना पानी बिगाड़े, इतना हवा बिगाड़े। रात को हम कहते हैं कि बहुत बिल आ रहा है, बहुत लाइट बिल आ रहा है। कल्पना करो यदि यह सूर्य नहीं होता तो बिल भर भर कर हम लोग मर गए होते हैं। यदि यह सूर्य नहीं होता तो भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं मत भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मत भयात। मेरे भय से यह सूर्य खड़ा है, मैंने खड़ा रखा है संसार के लोगों के लिए। भगवान ने सूर्य का निर्माण किया, चंद्र का शीतलता देते हैं, हवा पानी सब कुछ भगवान देते हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि थैंक यू कहने का भी समय नहीं है हमारे पास। कहना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। भक्ति क्यों करनी चाहिए हमें, ये पहली बात है कि इतना सुंदर इतनी वस्तु भगवान ने दी तो उसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए। ये सब छोड़िए, इतना सुंदर शरीर दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। यदि यहां से किसी को कहा जाए आपकी एक उंगली काट कर दे दो, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, कौन देने के लिए तैयार है? एक हाथ काट कर दे दो, 10 लाख रुपया दूंगा। दोनों पांव काट कर देखो, 1 अरब रुपया दूंगा, कौन देने के लिए तैयार है? भक्तों इसका अर्थ है कि 1 अरब के पांव हैं, 1 लाख की उंगली है, सब कुल हिसाब किताब जोड़ेंगे तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। करोड़ों रुपया देने के बाद भी यह शरीर नहीं मिलता है, ऐसा शरीर भगवान ने हमें दिया है। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया और भगवान को थैंक यू कहने का भी समय नहीं है, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य बात है, शर्मजनक बात है। इतना कुछ देने के बाद भी भगवान के प्रति कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई नहीं। कुछ लोग कहते नहीं हम तो दिया बत्ती दिखाते हैं, परंतु दिया बत्ती ऑफिस में करते होंगे, दिया बत्ती दिखाते हैं लेकिन उससे ज्यादा तो सिगरेट का धुआं देते हैं। कुछ लोग आरती पूजा करते होंगे परंतु उससे ज्यादा तो सिगरेट मावा खैनी तंबाकू का बदबू देते होंगे। भगवान को थैंक यू कहने की कुछ विधि है, और भगवान के लिए थैंक यू क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा,
हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार से 800 बार थैंक यू कहो तब एक एक माला होती है, और ऐसे 16 बार थैंक यू कहना पड़ेगा तब जाकर लेवल होगा, ज्यादा नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 16 माला जप करता है तो भगवान ने जो दिया है उसे बराबरी तो नहीं कहा जाएगा, परंतु फिटूस होता है, वसूल होता है। परंतु हम तो वह भी नहीं करते हैं, इसलिए हम तो भगवान की निगाह में बहुत बड़े गुनेगार हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम लोग चोर हैं। चोर का अर्थ क्या होता है? दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करना, सब भगवान का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा मेरा करके जीवन बीत जाता है। वास्तव में देखा जाए सब कुछ भगवान का है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक सेठ को बहुत सुंदर पलंग बनाना था। सोचा कि रेडीमेड लूंगा तो 1-2 महीने में टूट जाएगा, इसलिए मिस्त्री को बुलाकर घर पे मजबूत पलंग बनाऊंगा। तो मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बुलाकर कहा कि देखो भाई मुझे पलंग बनाना है, बेड बनाना है, उसके लिए कितना लकड़ा लाना होगा, कितना स्क्रू लाना होगा, कितना फेविकोल लाना होगा, सब सामान का लिस्ट दे दो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, मजदूरी ले लेना। मिस्त्री ने सारा लिस्ट बना कर दिया, सेठ ने वह सारा सामान दुकान से उसे दे दिया। मिस्त्री को कहा कितने दिन में आप तैयार कर दोगे? कहा कि 10 दिन में तैयार कर दूंगा। तो बेड बनाना शुरू किया। वह सेठ तो सुबह घर से निकल जाता, शाम को आता तो वह बेड धीरे धीरे बन रहा था। 1, 2, 3, 4 और 10 दिन बीते। 10वें दिन जब सेठ घर पर आया तो वह मिस्त्री उस बेड को लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा लेकर जा रहे हो? मिस्त्री ने कहा मेरे घर लेकर जा रहा हूं। सेठ ने कहा क्यों? मिस्त्री ने कहा मेरा है। मिस्त्री ने कहा मेरा है। सेठ ने कहा तुम्हारा कैसे है भाई? मिस्त्री ने कहा मैंने बनाया, 10 दिन से तो मैं मेहनत कर रहा हूं, सच बताओ वो बेड किसका है? सेठ का। किसका है? सेठ का। क्यों? क्योंकि वो वस्तु सेठ की है। भक्तों थोड़ा सा विचार करो, इस संसार में हम हमारा मेरा 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 करते हैं, हमारे शरीर से क्या प्रकट किए हैं? एक भी ईंट हमारे शरीर से निकली है? एक भी हीरा हमारे शरीर से निकला है? सब भगवान की संपत्ति है, यहाँ का माल यहाँ, वहां का माल वहां करते हैं, उसमें कुछ पैसा मिल जाता है और सोचते हैं हमारा है। वास्तव में सब कुछ भगवान का है। और हम यह नहीं कहते हैं सब कुछ भगवान को दे दो, कम से कम दिन में एक दो घंटा तो भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे।
भक्ति क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्तिर उच्यते। यह शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इस शरीर से भगवान की सेवा होनी चाहिए। यह पहली बात, भक्ति क्यों करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की निगाह में गुनेगार माने जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट के नियम का पालन आप नहीं करते हो तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको जेल में बंद किया जाएगा। तो भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में यदि भगवान के नियम का पालन नहीं करते हो तो भगवान की बनाई हुई जेल में हमें बंद किया जाएगा, और भगवान की जेल का नाम है नरक। तो दूसरा पॉइंट, यदि नरक में जाने से हमें बचना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि भक्ति नहीं करेंगे तो हमें नरक में जाना होगा। और नरक में क्या होता है, सौभाग्य अवसर मिले तो श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय पढ़कर देख लीजिएगा। यह सुनकर परीक्षित महाराज के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत भयावह दंड होता है वहां पर। इस नरक की यातना से यदि बचना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति कीजिए। तीसरी बात, भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम सब लोग दुखी हैं। तो भगवान की भक्ति तीसरा पॉइंट इसलिए है, सुखी होने के लिए। और कैसा सुखी? नित्य सुखी होने के लिए। यहां पर हम थोड़ा बहुत धन कमाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, सुख मिलता है, परंतु कितना? क्षणिक सुख, क्षणभंगुर। परंतु क्षणिक सुख नहीं, नित्य सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और नित्य सुख कब प्राप्त होगा? जब इस पृथ्वी लोक को छोड़कर हम भगवान के धाम में वापस आएंगे। क्योंकि जब तक इस पृथ्वी लोक में हम हैं, यह दुखालय अशाश्वतम, यह जगत दुखालय है, दुखों का सागर है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह है कि हम इस पृथ्वी लोक पर हैं। जब हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब हम सुखी हो पाएंगे। इसलिए भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। और जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा दुख है हम भगवान से अलग हो चुके हैं। भगवान से अलग होने के कारण हम सब लोग दुखी हैं। तो भगवान के पास वापस जाने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। इस बात को एक दृष्टांत के साथ समझ सकते हो कि एक बार एक करोड़पति व्यक्ति का लड़का, माता पिता और पुत्र तीनों मेले में गए थे। मेले में पुत्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ के रखा और मेले में बहुत भीड़ भाड़ होने के कारण पुत्र और पिता का हाथ छूट गया। पिता ने पुत्र को बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। पिताजी घर पर चले गए और पुत्र बेचारा घूमते घूमते रास्ते पर आया। जिस समय वह पिता की उंगली छोड़ा उस समय से वे रोने लगा। कई लोगों ने देखा कि ये रो रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि लगता है ये भूखा है, भूख के कारण रो रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने वड़ा पाव लाकर दे दिया, फिर भी ये रो रहा था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि लगता है इसके पास पैसे नहीं है, तो इसके जेब में 500 रुपये रख दिए, फिर भी ये रो रहा था। कुछ लोगों ने सोचा कि बेचारा बीमार है, थोड़ी दवाई दे दूं, तो क्रोसिन मेटासिन इत्यादि दवाई दे दी, फिर भी ये रोता रहा। कुछ लोगों ने सोचा कि ठंडी की सीजन है, इसके पास कंबल नहीं है, इसलिए रो रहा है, किसी ने कंबल दे दिया, फिर भी ये रो रहा था। परंतु पांचवा व्यक्ति जब उसे मिला तो उन्होंने सोचा कि इसने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, ये रो रहा है परंतु लगता है कोई बड़े बाप का बेटा है। इसलिए पांचवे ने उसे कुछ नहीं दिया परंतु उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर गए और वहां लेकर जाकर कहा कि यह बालक रो रहा है, देखो किसका बालक है। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम तो इसे ही ढूंढ रहे थे, इसके पिताजी करोड़पति हैं और सभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा कर गए हैं। तुरंत फोन किए, पिताजी मर्सिडीज कार में आए, पुत्र को गले लगाया, पुत्र खुश हो गया, पिता पुत्र दोनों चले गए। कहानी बहुत छोटी है परंतु उपदेश बहुत है इसमें, सार गर्हित कहानी। वो पुत्र और कोई नहीं हम है, जीव है, और वो पिता और कोई नहीं भगवान है। जैसे ही जीव आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं, यह जीव जैसे ही भगवान से अलग होता है उसका दुख का दिन शुरू हो जाता है, वो रोने लगता है, और वे तब तक रोएगा जब तक अपने पिता से जुड़ेगा नहीं। भगवान से विमुख होकर हम भगवान के धाम से यहां आकर सब लोग रो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सुखी है, सब लोग दुखी हैं। इस संसार के कुछ लोग सोचते हैं कि इस संसार में जो दुखी हैं हम उसे कुछ भोजन खिला देंगे, अन्न दान कर देंगे तो वो सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत अन्न दान करते हैं, परंतु आपने देखा भोजन मिलने के बाद भी ये सुखी नहीं हुआ। फिर किसी ने उसे धन दिया, कुछ लोग बहुत धन का दान करते हैं, धन दिया फिर भी ये सुखी नहीं हुआ। किसी ने दवाई दिया, कुछ लोग बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनाते हैं परंतु दवाई देने के बाद भी वो जीव रोता ही रहता है, पूर्ण सुखी नहीं होता है। कुछ लोग कपड़े दान करते हैं, किसी ने कंबल दिया फिर भी वह रोता रहा, वह रोना तब तक बंद नहीं किया जब तक अपने पिता से नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहने वाले लोग रोते हुए या दुखी होते हुए तब तक बंद नहीं होंगे जब तक वे भगवान के पास वापस नहीं जाएंगे। इसलिए इस संसार के दुख से हम तब मुक्त हो सकते हैं जब इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के पास जाएंगे। तो भक्ति करने का तीसरा कारण यह है कि भक्ति करने से हमें आत्यंतिक पूर्ण नित्य सुख मिलता है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। चौथी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के बाद मरने के बाद सुख मिलता है, यहां किसने कुछ देखा है? तो ऐसा नहीं है, भक्ति करने के बाद तो सुख मिलता ही है, भगवान का नाम मिलता ही है, परंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भक्ति करते समय भी बहुत सुख मिलता है। भक्ति एक ऐसा कार्य है जो साधन काल में भी सुख मिलता है और सिद्ध काल में भी सुख मिलता है। और भक्ति के अलावा इस संसार में जितने भी कार्य हैं वे साधन काल में भी दुख है और फल में भी दुख है। जैसे विवाह, कुछ लोग विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने के लिए सबसे पहले उसे मेहनत करनी होगी, धन कमाना होगा। तो विवाह करना है तो उसके पहले धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या उसमें सुख? बहुत दुखी होकर उसे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करने के बाद जब उसका फल भोगने का समय आ गया, विवाह हो गया, उसके बाद क्या सुख मिलता है? जितने लोगों का विवाह हुआ है उसको पूछ लीजिए कितने सुखी हैं। तो भौतिक संसार के कार्य में साधन काल में भी दुख है और सिद्ध काल में भी दुख है, परंतु आध्यात्मिक कार्य में भगवान की भक्ति करने में भी आनंद है और भक्ति करने के बाद मृत्यु के बाद भी भगवान का धाम जिसमें नित्य आनंद है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है और भक्ति से दोनों लाभ प्राप्त होता है। ये चौथा कारण। और पांचवा कारण जो सबसे मुख्य कारण है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? देखिए, शास्त्र की बात को बहुत सरल भाषा में प्रकट कर रहा हूं, ये सब संस्कृत के श्लोक के शब्द की बिल्कुल साधारण हिंदी में आपको कह रहा हूं। भक्ति करने का पांचवा कारण, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति जो शब्द है भज धातु से बना है। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनकी कुछ धातु होती हैं और एक धातु से हजारों शब्द बनते हैं। तो भक्ति शब्द भज धातु से बना है और भज का अर्थ होता है भज सेवायाम, भज का अर्थ होता है सेवा। तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसकी सेवा? भ माने भगवान की सेवा, भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा। अब प्रश्न होता है कि व्यक्ति सेवा कब करता है? व्यक्ति सेवा तब करता है जब वे किसी से प्रेम करें। इसलिए भक्ति का पूर्ण अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रेम भरी सेवा। भक्ति का अर्थ एक होता है प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। तो पांचवा कारण, भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति इसलिए हम करते हैं क्योंकि आत्मा का हमारा एक स्वभाव है प्रेम करना। इसलिए आप देखेंगे सब लोग किसी ना किसी से प्रेम करना चाहते हैं, केवल मनुष्य नहीं पशु भी प्रेम करना जानते हैं। मनुष्य तो जानते हैं, पशु भी, क्योंकि ये जीव का आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। आप विचार कीजिए, जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही वह अपनी माता से प्रेम करता है। यदि माँ थोड़ी भी दूर हो गई तो वह बालक रोने लगता है। जन्म से ही वह माता से प्रेम करता है। धीरे 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 वह बालक बड़ा होता है, जब समझने लगता है और पता चलता है कि माता तो पूरा दिन घर पर बैठती रहती हैं, पिताजी जब घर पर आते हैं तो खिलौने लेकर आते हैं, तब वह बालक माता से प्रेम करना छोड़ देता है, पिता की राह देकर बैठते हैं, बैठता है कब पिताजी आएंगे। वह बालक माता से प्रेम बंद, अब पिताजी से प्रेम करने लगता है। रोज पिताजी की राह देखते हैं, पिताजी को फोन करता है। फिर वह बालक जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है, खेलने कूदने की उम्र जितना हो जाता है, तब वह पिताजी के साथ प्रेम करना छोड़कर मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। फिर तो पिताजी घर पर आते हैं, पिताजी देखते हैं कि बालक तो खेलने में ही ध्यान है, बहुत बहुत बुलाने पर भी वह घर पर नहीं आता है, यहां तक मित्रों के लिए पिताजी को दांड भी देता है, गाली भी दे देता है, तो मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। फिर जैसे ही धीरे 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 बड़ा होता है और कॉलेज में आता है और उनके मित्र उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, क्रिकेट खेलने आया नहीं, तब पता चला कि इसका प्रेम किसी लड़की के साथ हो गया है। कॉलेज में मित्र से फिर किसी लड़की के साथ प्रेम हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो लड़की के साथ प्रेम करते करते फिर उसके साथ विवाह कर लेता है। विवाह हो गया तो फिर बच्चे तो होने हैं, अपनी पत्नी के बाद बच्चों से प्रेम करता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति जन्म से मां के साथ, फिर पिता के साथ, फिर मित्रों के साथ, फिर किसी लड़की के साथ, फिर पत्नी के साथ, फिर बच्चों के साथ। कहानी तो बहुत लंबी है, सुना दूं? फिर अपने बच्चों से प्रेम करता है। यहां पर अब दो फैमिली एक साथ हो गए, उनके माता पिता और इनकी पत्नी और पुत्र। फिर ये जो नई पत्नी घर पर आई है, कल मैंने कहा था, वैसे कहती है कि देखो भाई, हम रहे मॉडर्न जमाने के और आपके माता पिता पुराने जमाने के हैं, उनके विचार मन सब पुराने जमाने के हैं, हम उनके साथ सेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए काम करो, या तो हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं या आपके माता पिता को घर से बाहर निकाल दो। तो माता पिता सोच समझ कर वही घर से बाहर निकल जाते हैं, कहीं घर लेकर अकेले में रहने लगते हैं। तो जीव का इस प्रकार से सबके साथ प्रेम होता है। आगे कहानी है कि फिर वो माता, वो जो बूढ़े जो घर के बाहर निकल गए हैं, उसमें बूढ़ी की मृत्यु हो गई, बूढ़ा अकेला बचा बेचारा। बूढ़ा बच्चा एक दिन की बात, समुद्र किनारे पर चल रहा था, अब घर पे भोजन बनाने वाला नहीं, इसलिए भेलपूरी बिस्किट खाकर जीवन बिता रहा था। पार्ले बिस्किट खा रहा था और खाते हुए जा रहा था समुद्र किनारे पर, उतने में एक बिस्किट नीचे गिर गया। जैसे ही बिस्किट गिरा तो कुत्ता आया और उस बिस्किट को खा लिया। सोचा कि और भी बिस्किट देंगे, तो उस बूढ़े के पीछे पीछे चलता चलता आया और घर तक आया। बूढ़े ने उस कुत्ते को भगाकर घर का दरवाजा बंद कर दिया, घर पे आके सो गया। सुबह उठकर घर का दरवाजा खोला तो देखा कुत्ता सुबह तक उस दरवाजे के पास बैठा था। तब उस बूढ़े ने सोचा कि देखो, जन्म से मैंने माता से प्रेम किया, फिर पिता से किया, फिर मित्रों से किया, फिर लड़की से किया, पत्नी से किया, फिर पुत्र से किया, परंतु मेरे जीवन में वास्तविक प्रेम करने वाला यह कुत्ता है, बेचारा रात भर मेरे दरवाजे के पास बैठा रहा। फिर कुत्ते को कहते हैं वेलकम, आ जाइए। फिर वो बूढ़ा कुत्ते के साथ खेलता है, उसी के साथ खाता है, पीता है, नहाता है। कहने वाले ने बहुत सुंदर कहा है कि वास्तव में ये पूरी कहानी, इस कहानी में कॉन्स्टेंट चीज कौन सी रही? प्रेम। व्यक्ति जन्म से मां से प्रेम, पिता पुत्र, प्रेम करना नहीं छोड़ता है। और यदि कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला तो कुत्ते से प्रेम करता है, परंतु प्रेम जरूर करता है। इसलिए कहा गया है, यदि GOD गॉड से प्रेम नहीं करोगे तो DOG डॉग से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करना ये आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। हम सब कुछ भूल सकते हैं परंतु प्रेम करना नहीं भूल सकते हैं। इसलिए ये आत्मा तब प्रसन्न होती है जब उसे प्रेम करने का अवसर मिले। और इस संसार में प्रेम करने लायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि प्रेम उससे किया जाता है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। पति पत्नी में प्रेम होता है परंतु कब तक? जब तक पति पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे, पति पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। जब मंगनी होती है, एंगेजमेंट होता है, तब दोनों फॉर्म में होते हैं। जो पति होता है पत्नी की सभी इच्छा पूर्ण करता है, इसलिए पत्नी खुश होती है, और पत्नी पति की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए वे भी खुश होता है। विवाह के बाद दोनों ढीले पड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे के बीच में झगड़ा के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा एकमात्र कृष्ण पूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण है। उपनिषद कहती है, ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदह पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। वे पूर्ण है, इसलिए सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में वे समर्थ है। इसलिए प्रेम एकमात्र कृष्ण से किया जाता है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो निश्चित सुखी हो जाएंगे। तो भक्ति करने का पांचवा कारण और सबसे मुख्य कारण कि हमारा आत्मा का स्वभाव, मूलभूत स्वभाव है प्रेम करना, और यह प्रेम एकमात्र कृष्ण से हो सकता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो कृष्ण की भक्ति करना आवश्यक है। इसलिए प्रहलाद महाराज इस बात को अपने पिता को कह रहे हैं कि पिताजी, इस संसार में सबसे अच्छा कार्य क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति करना। और भगवान विष्णु की कई प्रकार से भक्ति की जा सकती है। भक्ति के कई सारे अंग हैं। रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में कहते हैं, हरि भक्ति विलासेशा भक्ते अंगानी लक्षस। लाखों प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है, परंतु लाखों प्रकार से जो भगवान की भक्ति की जा सकती है उनमें श्रेष्ठ है 64 प्रकार की भक्ति। और 64 प्रकार की भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। और प्रहलाद महाराज जिस भक्ति के बारे में कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज की बात को कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति। भजन भक्ति में सबसे श्रेष्ठ नवदा भक्ति है। और कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। ये नवदा भक्ति के द्वारा क्या होगा? कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। केवल कृष्ण प्रेम ही नहीं, साक्षात कृष्ण को प्रदान कर देगी ये नवदा भक्ति। कृष्ण को देने वाली है। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो है नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में सर्वप्रथम है श्रवणम। सबसे श्रेष्ठ है श्रवण भक्ति और सबसे मुख्य है। क्योंकि जब तक श्रवण भक्ति नहीं किया जाता है तब तक ये 9 में से कोई भक्ति नहीं हो पाएगी। श्रवण का अर्थ होता है मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं। 2 घंटे से सब लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं। ये 2 घंटा भगवान की किताब में लिखा गया है कि इन्होंने 2 घंटा श्रवण भक्ति की, जीवन का 2 घंटा सफल हो गया। इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनना, इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। श्रवण करने से, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनने से भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। तब संसार के लोग कह सकते हैं कि आप कहते हो कि भगवान की कथा सुनने से भगवान मिल जाते हैं, किसी को मिले हैं? तब रूप गोस्वामी कहते हैं, हां, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैया सकी सकीर्तने। कहते हैं विष्णु का श्रवण करने से परीक्षित महाराज भगवान 7 दिन में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। परीक्षित महाराज आज से 5000 वर्ष पूर्व एक चक्रवर्ती सम्राट थे और इतने प्रतापी राजा थे, उसके शासन में किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं था, सब लोग सुखी थे। और एक समय की बात, मीरा करने के लिए, शिकार करने के लिए वन में गए, अकेले थे। शिकार करने के लिए बहुत समय बीत गया, इसलिए भूखे और प्यासे हुए। बहुत प्यास लगी, नदी नाला कुछ नहीं मिला। अंत में एक ऋषि मुनि की कुटिया दिखाई दी। साधु के आश्रम में गए, गया तो वहां पर समीक मुनि ध्यान कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने सोचा, मैं तो राजा हूं, राजा का सम्मान होना चाहिए, ये ध्यान में बैठे हैं। सही ध्यान कर रहे हैं कि नकली ध्यान में बैठे हैं, यह देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप उनके सिर पर डाल दिया। परंतु वे हिले नहीं, परीक्षित महाराज ने देख लिया कि ये सही ध्यान में। परंतु उसी दृश्य को एक बालक ने देख लिया, और वह समीक मुनि का एक पुत्र था जिनका नाम था श्रृंगी। और वह बालक ने श्रृंगी को जाकर कहा कि एक व्यक्ति ने तुम्हारे पिता के गले में सांप को डाला। अब उसने यह नहीं बताया मरा हुआ था कि जीवित था। श्रृंगी ने मन में सोचा कि मेरे पिताजी के ऊपर सांप डाला, मेरा पिताजी मर गए होंगे, इसलिए उन्होंने वहीं पर जहां पर स्नान करे थे वहीं खड़े खड़े हाथ में जल लिया, और जल लेकर उसने श्राप दिया कि जो किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसे मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह के श्रृंगी अपने पिता को देखकर जब आश्रम में आए तो पिता जीवित थे। तब श्रृंगी पिता को कहने लगे, आज मेरे से बहुत गलत काम हो गया। क्या हुआ? कहा कि निर्दोष व्यक्ति को मैंने श्राप दे दिया। समीक मुनि ने ध्यान में देखा तो पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को श्राप दिया है। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि वे बहुत दुखी हुए। कहा कि और किसी को भी श्राप दिया होता तो चलता, परंतु राजा परीक्षित को जिसके डर से यह कलयुग कांपता है। राजा परीक्षित चाहते तो इस कलयुग को आने ही नहीं देते। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद तुरंत सतयुग आ जाता, कलयुग नहीं आता। इतने चक्रवर्ती सम्राट थे। वहां पर अफसोस किए हैं कि अब लूटफाट बढ़ेगी, चोर की संख्या बढ़ेगी, पाखंडियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि परीक्षित को श्राप दिया है। लेकिन ब्राह्मण के मुख से एक बार निकल गया था, निकल गया। तब समीक मुनि ने किसी व्यक्ति को भेजा, जाओ परीक्षित महाराज को कहो कि आपको श्राप लगा है, कुछ उपाय करना है तो कर लो। परीक्षित यहां पर घर पर पहुंचे, उसके पीछे पीछे ही एक व्यक्ति आया, बताया कि 7 दिन में आपको मरना है, आपको श्राप लगा है। तुरंत परीक्षित महाराज मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किए। असुर लोग मृत्यु से बचने का उपाय करते हैं, परंतु भक्त लोग मृत्यु को सवारने का उपाय करते हैं। कंस को जब पता चला कि जिस देव की अपनी बहन का रथ चला रहा है उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो रथ चला रहा था अपनी बहन का रथ को छोड़कर अपनी बहन के बाल पकड़कर उसे काटने तैयार हो गए। असुर लोग मृत्यु को काटने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त लोग मृत्यु को संवारते हैं। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राज कारोबार सौंपकर, लाखों लाख दास दासी राज रजवाड़े छोड़कर हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर निकल गए, और सभी ऋषि मुनियों के चरणों में एक ही जिज्ञासा करने लगे, 7 दिन बचे हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे क्या करना चाहिए? कई लोगों ने उत्तर दिया, दान करो, क्योंकि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। राजा ने कहा, दान करने से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग से फिर यहां आना पड़ता है, दान मुख्य नहीं है। तीर्थाटन करो, राजा ने कहा, तीर्थाटन करने से हृदय पूर्ण पवित्र नहीं होता है। तब उसी समय भगवान के मनोयोग से, भगवान की इच्छा से व्यास पुत्र परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को चैलेंज करके कहा कि परीक्षित डरो मत, आप मेरे मुख से भगवत कथा सुनो, 7 दिन भागवत कथा सुनो, 7 दिन भागवत कथा सुनकर निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राजन, आपके पास तो 7 दिन है, खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग महाराज के पास केवल 2 सेकंड थी, स्वर्ग में थे। इंद्र उन पर प्रसन्न हो गया। इंद्र ने कहा, बोलो क्या चाहिए? खटवांग राजा ने कहा, मुझे भगवान का धाम दे सकते हो? इंद्र ने कहा, यह नहीं कर सकता। तो खटवांग राजा ने कहा कि बताओ मेरी मृत्यु कब होने वाली है? इंद्र ने कहा, 3 घड़ी में आपकी मृत्यु होने वाली है। तब खटवांग राजा ने कहा कि एक घड़ी में मुझे पृथ्वी पर भेज सकते हो? इंद्र ने कहा ये कर सकता हूं। कहा तुरंत भेजो पृथ्वी पर। राजा खटवांग इस पृथ्वी पर आए, दो घड़ी में अंतिम क्षण में भगवान की याद करके, भगवान की लीला का स्मरण करके, भगवान परीक्षित को विमान पे बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए। हरे कृष्णा हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तक्षक नाग आया, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप विफल नहीं जाता है। तक्षक नाग आया और डसा भी, परंतु परीक्षित के शरीर को डसा, परीक्षित को भगवान के धाम में चले गए थे। इस प्रकार केवल 7 दिन 7 रात तक कथा श्रवण करने से व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है, इसे श्रवण भक्ति कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे तो ठीक है, अभी श्रवण करने की क्या जरूरत है, जब हम मरने की अवस्था होगी तो लास्ट 7 दिन श्रवण कर लेंगे। भक्तों एक बात याद रखिए, परीक्षित महाराज के जीवन में तो कंफर्म था कि वे 7 दिन के बाद ही मरेंगे, परंतु हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है 7 दिन के बाद मरेंगे, 7 घंटे के बाद मरेंगे कि 7 मिनट के बाद मरेंगे। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में व्यक्ति कभी भी मर सकता है। इसलिए यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो आज और अभी से ही भगवान के कथा सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए, भगवान की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। तो नवदा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवण भक्ति है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम 5 दिन से यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अभी भी 8 भक्ति का वर्णन बाकी है, मैं कल करूंगा। और इसी के साथ साथ प्रहलाद महाराज की शिक्षा का वर्णन होगा, और उसके बाद भगवान नरसिंह देव प्रकट होंगे और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध होगा और प्रहलाद महाराज की विजय होगी। कथा बहुत बाकी है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर जल्दी आइए और धैर्य से कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम।